ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 29। आप लोगों से निवेदन है कि 7 बजे तक आवृत्ति पूरी हो जानी चाहिए, इसमें जितने लोग हो सकते हैं आप लोग बांट लीजिए संख्या। 5 पुरुष करेंगे, 5 माताजी लोग और 4 बच्चे, 7 बजे तक पूरा कर रहे हैं। नवेद कश्चि भगवान चिकीर्षिता तवे हमानस्य नृणां विडम्बनम्। न जस्य कश्चि दयितोऽस्ति कर्हिचित् देश्यास्त जस्मिन् विषमामतिर्निर्णाम्। जन्म कर्म च विश्वात्मान अजस्या कर्तुरात्मनः त्रियंगि शिशु जातासु तदत्यंत विडम्बनम्। गोप्या ददे त्वयि कृता दशिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम्। वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीर विजद्विभेति। केचिदाहुरजं जातां पुण्यस्व कस्य कीर्तये यतोः प्रियस्वान्वाये मलयस्येव चन्दनम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। धारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो यत्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्ष्मशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः। त एव पश्यन्त चिरेण तावकाम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। महारानी कुंती के मन में भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य बहुत प्रदीप्त हो रहा है, अतः वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई लीलाओं पर विचार कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि हे प्रभु, आपने वैषम्य नहीं है, किसी के प्रति विषमता नहीं है। इसके पहले श्लोक में उन्होंने कहा भूतानाम जन्मिथा कलि, प्राणियों में आपस में जो कलह होता है वो उनके कर्म संस्कार का फल होता है, आप किसी से कलह नहीं करते हैं, आप किसी से द्वेष नहीं करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते हैं, कोई आपका प्रिय नहीं है न आपके द्वेष का पात्र है, सभी एक समान है। नजस कश्चित दैत्य, आपका कोई दैत्य नहीं है, दैत्य का अर्थ है प्रिय, और इसके साथ ही आपका कोई द्वेष का पात्र नहीं है। यह प्रश्न होता है कि क्या भगवान को कोई जीव प्रिय नहीं है? नहीं है, श्री कृष्ण का अंश जीव है, भगवान के चित शक्ति स्वरूप शक्ति का वो अंश है जो नित्य सिद्ध भगवान के परिकर हैं वैकुंठ में, वे अत्यंत प्रिय हैं। और यहां तक कि जो प्राकृत जगत में अनादि बहिर्मुख जीव हैं ये भी भगवान के अर्थ से प्रिय हैं, परंतु इस संसार में जैसे किसी मनुष्य में देखा जाता है कुछ लोग प्रिय हैं कुछ लोग अप्रिय हैं, कुछ लोगों के योग क्षेम की चिंता आदमी करता रहता है और कुछ को चाहता है कि उनके ऊपर वज्रपात हो जाए, वो नहीं चाहता है। इस तरह की विषमता आप में नहीं है, कुंती महारानी कह रही। जब उन्होंने कहा कुंती जी ने कि आप में विषमता नहीं है तो भगवान ने कहा कि मैं पार्थ सारथी हूं, अर्जुन को विजयी बनाने के लिए न करने योग्य काम भी मैं करता हूं युद्ध में, अन्याय से भी अर्जुन को विजयी बनाना चाहता हूं, तो निश्चित है कि अर्जुन का मैं प्रिय हूं, अर्जुन मेरा प्रिय है, और इसके साथ ही साथ मैं किसी का वध करा रहा हूं, किसी को परास्त करा रहा हूं, जैसे दुर्योधन की पार्टी को या अन्य अवसरों पर अन्य अवतारों में भी, जैसे मैंने प्रहलाद की रक्षा किया और हिरण्यकश्यपु का वध किया, तो मुझमें तो वैषम्य तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं किसी को अपना प्रिय मानता हूं, किसी को अपना द्वेष से मानता हूं, द्वेष का पात्र मानता हूं, मेरी लीलाओं में तो यह सब देखा जाता है। कुंती महारानी कहते हैं हां आपकी लीलाओं में वैषम्य देखा जाता है लेकिन विषमता नहीं होती है, वास्तव में आपके अभिप्राय को कोई नहीं जान पाता है। श्रीपद जीव गोस्वामी जी टीका लिखे हैं कि भगवान ने इस जगत में अवतरित होते हैं तो विविध लीला करते हैं, तो इसके पहले वाले श्लोक में कुंती महारानी यह कहती हैं कि आप में अनुग्रह और निग्रह, किसी को किसी के साथ प्रेम करना किसी को दंडित करना ये देखा जाता है, लेकिन ऐसा होते हुए भी आप सम रहते हैं, तो फिर ऐसा करते क्यों हैं? क्यों किसी से प्रेम करते हुए देखे जाते हैं और किसी को मारते हुए देखे जाते हैं? क्या अभिप्राय है भगवान का? कुंती महारानी इसी का उत्तर देती है कि न वेद कश्चित भगवान शिक्षितम, हे भगवान हे प्रभु, आपके अभिप्राय को कोई भी नहीं जान पाता है, कोई नहीं जान पाता। न वेद कश्चित भगवान शिक्षितम तवे मानस नृणाम विलंबनम, हरे कृष्ण शांति। तो नृणाम विडम्बनम इह मानस्य, आप मनुष्यों का अनुकरण करते हैं, तो मनुष्यों का अनुकरण करने में आपका अभिप्राय क्या है इसको कोई नहीं जानता। जैसे कई प्रकार की श्री कृष्ण की लीला है, वे अनेक स्त्रियों से विवाह किए। जैसे कोई मायाबद्ध व्यक्ति चाहता है स्त्री संग्रह करना, धन संग्रह करना, तो आपने धन संग्रह किया, द्वारका में सब ओर से धन लाया आपने जीत करके राजाओं को, और इसके साथ ही साथ अनेक स्त्रियों से आपने विवाह किया और अन्य अवसरों पर भी देखा गया कि आप गोचारण आदि लीला करते हैं, मनुष्य की लीला करते हैं, और श्रीराम अवतार में आप अपने पिता की बात मान करके वनवास स्वीकार किए, अयोध्या का राज छोड़ दिए। आपकी लीलाएं ऐसी हैं, महारानी कुंती कहती हैं, ऐसा लगता है मनुष्य यही समझते हैं कि यदि ये भगवान हैं फिर भी मनुष्यों का अनुकरण कर रहे हैं। विडम्बनम का अर्थ है, श्रीपद श्रीधर स्वामी जी करते हैं, विडम्बनम अनुकरणम, अनुकरण। अनुकरण का क्या अर्थ है? किसी के काम की नकल करना, इसको अनुकरण कहते हैं या अनुसरण। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कमर पर हाथ रख करके और सिर नीचा करके ऐसे चल रहा हो, एक हाथ से सिर पकड़कर एक हाथ को कमर पर रखकर, तो उसको देखा देखिए अगर दूसरा कोई वैसा करके चले तो कहा जाएगा उसकी नकल कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है। तो क्या भगवान मनुष्यों का अनुकरण करते हैं? नहीं। श्रीपदजीव गोस्वामी जी इसका अर्थ करते हैं, अनु का अर्थ है अनुरूप, सादृश्य युक्त। अनु भगवान है श्री कृष्ण जो कुछ करते हैं वह किसी का कभी अनुकरण नहीं करते, किसी का अनुकरण नहीं करते, नकल नहीं करते हैं। वे लिखते हैं कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं और भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। एक पारिभाषिक शब्द देते हैं कि श्री कृष्ण परब्रह्म स्वशक्तिक सहाय, स्वशक्तिक सहाय। श्री कृष्ण केवल अपनी शक्तियों से युक्त हैं, वे दूसरे की नकल करेंगे ही नहीं। जिस दिन भगवान दूसरे की नकल करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पराश्रित हो गए, वो स्वतंत्र नहीं है, दूसरे की नकल कर रहे हैं। तो अनुकरण का अर्थ ये है, अनु का अर्थ पश्चात भी होता है और सदृश। श्री कृष्ण अपने ही लीलाओं का अनुकरण करते हैं, बाद में उसको प्रस्तुत करते हैं, ये अर्थ है अनुकरण का। अनुकरण का यह अर्थ नहीं है नकल करते। श्री कृष्ण स्वयं ही नराकृति परब्रह्म है, मनुष्य का उनका आकार भर है। एक विद्वान भक्त प्रवचन कर रहे थे तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म नहीं है, नराकार ब्रह्म है, नर के आकार में ब्रह्म है, नराकार। तो उनकी नर की आकृति है, नर बपु तार स्वरूप। तो वो अपने शक्ति में ही रह करके अपना ही अनुकरण करते हैं, मतलब अपनी ही लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं। भगवान का ये स्वभाव है, वो कभी किसी का अनुकरण कर ही नहीं सकते, संसार उनका अनुकरण कर सकता है। तो जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि यदि भगवान दूसरे का अनुकरण करे तो इसका मतलब है दूसरे पर आश्रित हो रहे हैं, उनकी कोई भी लीला पर आश्रित हो जाएगी, ये दोष आएगा। अतः अनुकरण का, विडम्बनम का अर्थ है आप जब मनुष्य नाट्य प्रस्तुत करते हैं, मनुष्य लीला प्रस्तुत करते हैं तो क्यों करते हैं इसको कोई भी नहीं जान पाता है। नवेद कश्चित भगवत चिकित्सितम तवे है मानस निर्णाम विडम्बनम, निर्णाम विडम्बनम। मनुष्योचित लीला आप करते हैं कोई नहीं जान पाता क्यों कर रहे हैं। सब अर्जुन से प्रेम करते हुए प्रकट देखे जाते हैं, अन्य लोगों से द्वेष कर रहे हैं, वध करा रहे हैं, निग्रह कर रहे हैं। नजस कश्चित दैत्य, कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी काल में कहीं भी श्री कृष्ण का स्पेशल प्रिय नहीं है और न तो उनके द्वेष का पात्र, आपके द्वेष का पात्र है। वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुंदर स्वभाव के हैं, जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भगवान की लीलाओं में भगवान का सुस्वभाव प्रकट होता है। किसी के प्रति स्पेशल अटैच नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। एक दृष्टि से जीव उनके प्रिय हैं क्योंकि उनके अंश हैं, अपने अंश से स्वाभाविक सबको प्रेम होता है। जैसे मान लीजिए शरीर में आत्मा है तो शरीर के प्रत्येक अंग को वो एक समान देखता है, जितना प्रिय उसके लिए पैर है उतना ही प्रिय आंख है, नाक है, हाथ है, क्योंकि वो उसका अंश है। भगवान को सहज प्रिय होंगे लेकिन एक समान प्रिय है, स्पेशल कोई प्रिय नहीं है। तो प्रश्न होगा कि अपने भक्तों पर वे अनुग्रह क्यों करते हैं। कल मैं इस पर कुछ बोला था लेकिन उतना स्पष्ट नहीं हुआ था। भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति रहती है तो भक्ति भी स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, भगवान से वो अभिन्न है। जिस हृदय भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है तो उस भक्ति से युक्त होने के कारण भक्त उन्हें प्रिय लगते हैं, भक्त उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने वालों से यदि भगवान प्रेम करते हैं तो यह विषमता नहीं हुई, स्वाभाविक है। अब दूसरा प्रश्न होता है कि अभक्तों से या भक्त के द्वेषियों को क्यों मारते हैं, उनको क्यों मारते हैं। असुरों के वध में भी या भक्त के द्वेषियों के वध में भी भगवान का वैषम्य नहीं है, उनका प्रेम ही प्रकट होता है। जैसे कोई मां अपने बच्चे को थोड़ा सा दंड दे, उसके हित के लिए दंड देती है, बच्चे का शत्रु उसको नहीं माना जा सकता है कि बच्चे से द्वेष कर रही है, वैसे ही भगवान पर ये दोष आरोपित नहीं किया जा सकता कि वे असुरों का वध क्यों करते हैं। उनका संसार बंधन छुड़ा करके भगवान उन्हें अपने धाम में भेज देते हैं, इसलिए श्रीकृष्ण का यह सुंदर स्वभाव है। तो श्रीकृष्ण का कोई विशेष प्रिय नहीं है और द्वेष का पात्र नहीं है। विषमतिर निर्णय, ये मनुष्यों की विषमति है कि श्रीकृष्ण को समझते हैं श्रीकृष्ण पक्षपाती हैं, श्रीकृष्ण बहुत अटैच्ड हैं, श्रीकृष्ण कामी हैं या कृष्ण लोभी हैं, कृष्ण निर्दय हैं, अर्जुन को उकसा करके कुरुक्षेत्र में इतने लोगों का वध करा दिए। ये मनुष्यों की अपनी अपनी विषम बुद्धि है जो श्री कृष्ण में इस प्रकार के दोषों का आरोप करते हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि आप में कोई विषमता नहीं, नजस कश्चित दैतो से करी चीज दृश्यस्त जस्विन विषमा मते निर्णाम, जस्विन श्री कृष्ण निर्णाम विषमा मति भवती न तो कृष्ण वैषम्यम अस्ति, कृष्ण में विषमता नहीं है, सबके लिए समान। जैसे भगवान सूर्य सबके लिए सम है, वो चाहे गरीब व्यक्ति का आंगन हो या धनी का आंगन हो, एक समान प्रकाश देते हैं सभी घरों में। भगवान सूर्य ऐसा नहीं करते कि ये धनी का घर है तो जाड़े में उसमें ज्यादा प्रकाश हीट दे देना चाहिए और गरीब है तो वहां से जल्दी भाग जाए, वहां न प्रकाश दे, सर्वत्र सम भाव से प्रकाश दे रहे। अब उनके प्रकाश का लाभ है कोई ले या न ले तो उसमें सूर्य पर विषमता का आरोप नहीं किया जा सकता। भगवान सूर्य उगे हैं और मान लीजिए 10 बज रहा है बाहर प्रकाश है, पर कोई आदमी अपने घर में ही आलस्य के मारे ठिठुर रहा है, सी सी कर रहा है, तो भगवान सूर्य क्या करेंगे? ये नहीं कह सकते सूर्य भगवान उसको काढ़ करके अपने प्रकाश में क्यों नहीं पटक देते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सम है, उनमें कोई विषमता नहीं है। महारानी कुंती इस रहस्य को कितना सीधे साधे शब्दों में व्यक्त कर रही है कि आपने विषमता नहीं है, आपका कोई प्रिय नहीं है, आपसे जो प्रेम करता है तो आप उसे प्रेम करते हैं, आपसे जो द्वेष करता है तो आप द्वेष की निंदा करते हैं उसी के हित के लिए, तो आप में कोई विषमता नहीं है। यह आपके लीला की सुंदरता है। और अब ये कहते हैं कि आप विविध अवतार लेते रहते हैं, विविध अवतारों में आपका लीला करने में परम आवेश होता है, आवेश होता है, नकल नहीं। आवेश एक अलग बात है। बात है कि भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर है। शास्त्र में वेद में कहा गया है रसो वही सह, भगवान श्री कृष्ण रस है। रस शब्द के दो अर्थ हैं, रस्यते आस्वाद्यते इति रस, जिसका रस लिए जिसका आस्वादन किया जाए तो उसको रस कहते हैं। और रस शब्द का यह भी अर्थ है कि रस्यति आस्वादयति इति रस, जो स्वयं रस का आस्वादन करे उसको भी रस कहा गया है। इसीलिए परब्रह्म को श्रुतियां कहती हैं रसो वै स, भगवान रस हैं, रसिक शेखर हैं और स्वयं रसमय हैं। वे अनादि काल से इस रस के आस्वादन में लगे रहते हैं भगवान। उनके रस आस्वादन की लालसा कभी पूर्ण नहीं होती है, वो रसिक शेखर हैं और विविध रस है उनके लिए, स्वयं ही रस है। तो भक्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं और भक्त उनका आस्वादन करते हैं, चूंकि स्वयं रसमय है। इसके लिए विविध शरीरों में भगवान अवतार लेते हैं और किसी पर निग्रह दंड और किसी पर अनुग्रह कृपा करते रहते हैं, पर सारी लीलाएं कृपामय है। बाहर से देखने में लगता है कि दंड दे रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, पर प्रेम ही करते हैं, आस्वादन करते हैं। कुंती महारानी कहते हैं कि आप विविध योनियों में जन्म लेते ही रहते, अवतार लेते ही रहते हैं अपने धाम से। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य कर्तृत्मन त्रियं विशिशु तदत जात तदत्यंत विडम्बना। हे प्रभु, हे विश्वात्मन, हे विश्व के आत्मा, हे घट घट व्यापी, आप सबके हृदय में हैं, सर्वत्र हैं, इसको विश्वात्मा कहते हैं। हम लोग केवल देहात्मा हैं, एक देह के बात को जानते हैं, हमारे देह में क्या सुख है दुख है हम उसको जानते हैं, दूसरे के देह का नहीं जानते। देहात्मा कहते हैं जीवात्मा, और श्री कृष्ण विश्वात्मा, वो विश्व के कण कण में है, सब जगह क्या घटना हो रही है, किसके मन में क्या विचार उठ रहा है वो सब जानते हैं, सर्वत्र व्याप्त है विश्वात्मा। तो हे विश्वात्मन, वास्तव में आप अज हैं। सारे शास्त्र और सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आप अज हैं, आपका जन्म कभी नहीं होता है, न हुआ है न होगा न है, उसको अज कहते हैं। अ अर्थ नहीं और ज का अर्थ जन्म, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है न कभी जन्म होगा न इस समय हुआ है, उसको अज कहते हैं। तो शास्त्र और संत आपको अजन्मा कहते हैं, और अकर्ता कहते हैं, आप न जन्म लेते हैं न आप कोई कर्म करते हैं, आप कोई कर्म नहीं करते, जन्म नहीं लेते कर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी विविध शरीर धारण करके अपना स्वरूप प्रकट करके आप जन्म लेते देखे जाते हैं और विविध कर्म करते हुए भी देखे जाते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तृरात्मन, अजस्य जिसका जन्म नहीं है जो अजन्मा है, ऐसे आपका जन्म और जो अकर्ता है, कर्म कभी नहीं करता, उसका कर्म सर्वत्र देखा जा रहा है। तद अत्यंत विदमनम, ये तो और अधिक युक्ति के अगोचर है, अतर्क है, कोई मन से सोच ही नहीं सकता जो अजन्मा है वो कैसे जन्म लिया है, और जन्म लिया तो फिर भी अजन्मा क्यों कहा जाता है। जन्म लिया और विविध जन्म आप लेते ही रहते हैं, यहां तक कि त्रियंग ऋषिशु जादव सु, त्रियंग पशु को कहते हैं, वो पशु ऐसे खड़ा होता है तिरछा, उसको त्रियंग कहते हैं, कभी कभी पक्षी को भी त्रियंग कहा जाता है, पशु पक्षी त्रियंग, त्रियंग का अर्थ तिरछा, त्रियंग और ऋषु। आप देखा गया कि एकदम हीन जाति में पशु में भी जन्म लेते रहते हैं, जैसे बाराह आदि रूप से प्रकट होते हैं, और नृसु मनुष्यों में आप जन्म लिए, जैसे श्री रामचंद्र आदि के रूप में और स्वयं अपने रूप में भी आपका जन्म देखा जाता है, पशुओं में बाराह आदि रूप से, मनुष्यों में श्री रामचंद्र आदि रूप से, और ऋषियों में नर नारायण आदि के रूप में, और जादह कहते जलचरों को, जलचरों में मत्स्य अवतार आदि के रूप में आप प्रकट होते हैं। तो मेरा तो दिमाग चक्कर खा रहा है कि आप अजन्मा हैं और अजन्मा होते हुए ही जन्म ग्रहण करते हैं, इसमें से दोनों को डिनाई नहीं किया जा सकता। वास्तव में शास्त्र कहता है कि भगवान अजन्मा है, तो अजन्मा है तो कैसे जन्म लिए दशरथ जी के घर में, या वसुदेव जी के यहां, नंद बाबा के यहां कैसे जन्म लिए। जन्म लेकर के भी अजन्मा है, जन्म लेकर के भी जन्म नहीं लिए हैं, या अजन्मा है और जन्म लिए हैं, इसको अगर माना जाए तो ये कहा जाए यदि कृष्ण अजन्मा है तो जन्म और कर्म की उनकी लीला व्यर्थ है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। कोई कह सकते अजन्मा है तो कैसे जन्म लिए, और जन्म ले लिए तो अजन्मा कैसे रहे, ये आश्चर्य की बात है। इसीलिए कुंती महारानी का तत् अत्यंत विडम्बनम, विडम्बनम का अर्थ है अतर्क, इससे जान पाना कठिन है, किसी युक्ति या तर्क से जो अतीत वस्तु हो इस भाव को विडम्बनम कहते हैं, विडम्बनम आश्चर्य, अति आश्चर्य कैसे होता है। प्रकारांतर से कुंती महारानी भगवान के अवतारों का स्मरण कर रही है कि हे श्री कृष्ण आप पशु में भी अवतार लिए बाराह देव आदि के रूप में, आप पक्षियों में अवतार लिए हंस आदि के रूप में, हंस भगवान का अवतार हुआ, आप मनुष्यों में अवतार लिए श्री रामचंद्र आदि के रूप में, और ऋषियों में नर नारायण के रूप में, और जलचरों में मनुष्य नर नामक ऋषि और नारायण नामक ऋषि आदि के रूप में आपने जन्म लिया, जन्म भी लिया आपने और कर्म भी किया। जैसे बाराह देव के रूप में आप बिल्कुल हीन बाराह के वंश में जन्म लिए, शुकर बने, और आप लीला भी वैसे ही किए, शुकर का स्वरूप धारण करके और पृथ्वी की खोज कर रहे थे, सुंग सुंग करते पृथ्वी का पता लगा रहे थे। भगवान सर्वेश्वर हैं और सर्वज्ञ हैं, उनको एकदम पता था कि पृथ्वी कहाँ है, हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर रसातल में ले गए थे, भगवान को सब पता था, फिर भी वे पृथ्वी का पता लगा रहे थे सुंग सुंग करके,
कि सुसु करोती इति सुकर, जो सुसु करे उसको सुकर कहते हैं। तो सुकर का रूप धारण करके और पृथ्वी को का पता लगा रहे, पृथ्वी गंध प्रधान है, गंधमय है, तो गंध से पता लगा रहे थे कि पृथ्वी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सब जगह खोज रहे थे। कुंती महारानी कहती हैं अद्भुत ये विडम्बन लीला है, वैसे क्यों करते हैं आप, इतने महान हैं, सबके ईश्वर हैं, चिन्मय हैं, और ऐसे प्रभु अज्ञ बन करके पृथ्वी की खोज कर रहे थे, वो इतने महान आप इतने सुंदर और सुवर का स्वरूप ग्रहण किए, ये अत्यंत विडम्बना, उनको तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। एक तो जन्म लिए सुअर के रूप में और सुअर का कर्म भी गंध द्वारा पृथ्वी का पता लगा रहे थे। आपको देख करके हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कहता है, हंस करके कहा, अरे ये जंगल में रहने वाला जानवर पानी में कैसे आ गया, वो जानता था कि विष्णु है और इस तरह का नाटक कर रहा है, वो हंसने लगा, हंस करके कहा, वन में रहने वाला जीव वन में कैसे आ गया। वन का अर्थ जल भी होता है और वन का अर्थ जंगल भी होता है, तो जंगल में रहने वाला ये जीव पानी में कैसे आ गया। और यहां तक कहता है, तुम पृथ्वी को छोड़ते हो कि नहीं, भगवान पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके, दांत के अग्र भाग पर, दोनों दांत ऐसे निकले थे जुड़े थे उसके अग्र भाग पर, संपूर्ण भूमंडल को लेकर के और आराम से तैरते हुए आ रहे थे नीचे से उठाकर, श्वेत बाराह उज्जला बराह का स्वरूप भगवान का था इस कल्प में, इसको श्वेत बाराह कल्प कहते हैं। देखा बिल्कुल चंद्रमा की तरह धवल शरीर है और उज्ज्वल दांत हैं, दांत चमक रहे थे, दांतों के अग्र भाग पर पृथ्वी को लेकर के चले, छितिरी है नहीं ये तो कूर्म रूप है, हैं छितिरी है विपुल तरे स्थिति तो पृष्ठ है नहीं, वो तो कूर्म भगवान का है, बड़ा होगा, बसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। श्री जयदेव महान भक्त और महाकवि भगवान की स्तुति करते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे श्री कृष्ण आप 10 प्रकार के अवतार लिए, केशव धृत सुकर रूप, केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत मीन शरीर, ऐसे कहते गए, ये कृष्ण के अवतार हैं। तो वसति दशन शिखरे, दशन शिखरे, शिखर कहते हैं टॉप को, दशन के शिखर पर धरणी वसति, वसति धरणी, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना, भगवान के उज्ज्वल दांत पर इतनी सुंदर पृथ्वी लग रही थी, लगता था जैसे शशि में कलंक कला हो, काला पृथ्वी काली थी और भगवान के उज्ज्वल दांत पर दिखाई दे रही, शशि में जैसे कलंक कला होती है वैसे यह पृथ्वी भगवान के दांतों पर शोभित हो रही थी। इस तरह से भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, हिरण्याक्ष देखा, वो पता लगा लिया था कि वो गया है पताल में विष्णु, तो समझ गया यही है, तो गाली देने लगा, तुमको देवताओं ने और तुम्हारे भक्तों ने खिला खिला कर बहुत मोटा कर दिया है, तो आज मैं तुम्हारा मोटापन निकाल दूंगा, बहुत बहुत भोग लगाकर भक्तों ने तुमको पाला है, जो सही ही बोल रहा है लेकिन भक्तों के भोजन से भगवान थोड़े मोटे हुए, वो तो चिदगम है, चिन्मय है। पृथ्वी को छोड़ते हो कि नहीं, वो पीछे से गाली दे रहा था, छोड़ो पृथ्वी को छोड़ो, तुमको पता है कि ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को पृथ्वी दिया है, और ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि पृथ्वी कहां गई है, झूठ बोल रहा था, चोर नंबर वन, चुराया था पृथ्वी को, और कहता ब्रह्मा जी ने हम लोगों को दिया है, और ब्रह्मा जी से जब मनु महाराज ने कहा कि मैं कहां पर प्रजा की सृष्टि करूं, पृथ्वी नहीं है, तो ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे तो उनके छींक आई, उसी छींक से भगवान वराह का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि पृथ्वी कहां है, और झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा जी ने हम सकल वासियों को दिया है, ये पूरा अलॉट कर दिया है पृथ्वी। ब्रह्मा जी मालिक है संसार के, ब्रह्मा जी का बाप खोज रहा है और ऐसे उनसे बात कर रहा है, छोड़ो नहीं तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यदि तुम्हें शक्ति है तुम उसे युद्ध करो। लेकिन माता पृथ्वी कांपने लगी भगवान के दांतों पर, अगर लड़ाई होती है तो फिर वो गिर जाएगी जैसे तैसे, तो पृथ्वी के भय को देखकर भगवान उसका जवाब नहीं दे रहे थे, हिरण्याक्ष का वो ला रहे थे, ला करके अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को स्थापित किए जल के ऊपर स्थापित करके, और इसके बाद कहे मुड़ करके उसी स्वरूप से, आप जैसे बलवान व्यक्ति से बैर करके मैं कहां जा सकता हूं, कहां भाग सकता हूं, ठीक है आइए तब आपके साथ हमारा युद्ध हो जाए। तो भगवान ने कह दिया तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को हम लोग खोजते रहते हैं। ग्राम सिंह मतलब गांव का शेर कुत्ता, भगवान ने ऐसे कहा। कुत्ते भौंकते रहते हैं फिर भी आदमी जाता रहता है, तो भगवान ने कहा कि तुम कुछ भी भौंके उसका मुझे कोई गम नहीं है, अब आओ मेरे सामने। तो ग्राम सिंह है भगवान कहे, गांव का सिंह, गांव का शेर होता है कुत्ता वास्तव में, और अपने गली का तो शेर होता ही है। ऐसा भौंकता है कि लगता है कि अब जान नहीं बचेगी, और तुरंत कुछ ढेला मारी हो तो भाग चलता है। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह की बोली का हमें कोई कम नहीं है, ठीक है आओ। जब इस तरह से उसको भगवान ने कुत्ता कहा तो और पागल हो गया लड़ने के लिए, तो लड़ने लगा। दोनों गदा से युद्ध कर रहे थे, गदा से युद्ध कर रहे थे, भगवान ने कुछ हारने का भी नकल किया, इसे उसका उत्साह बढ़ता था, और अंत में बराह भगवान ने अपने बाएं हाथ से एक तमाचा मारा जोर से उसके कनपट्टी पर, उतने में ही उसे बिल्कुल मूर्छा आ गई, खून फेंकने लगा और गिर गया। गिर गया तो भगवान बराह उसके शरीर पर चढ़ गया और भगवान के मुख को देख रहा था, और उसके भगवान का सर्वांग सुंदर चिन्मय शरीर उसके देह पर था, और इस तरह से तो भगवान वो अपना शरीर छोड़ आई। मैत्रेय जी कहते हैं कि ओहो कितनी दुर्लभ मृत्यु है, इसको भगवान को देख करके शरीर छोड़ा, और भगवान साक्षात देह पर लेटे हुए थे। बहुत सुंदर मृत्यु हीरा की, इस तरह भगवान ने लीला किया। जब मनुष्य में अवतार लिए तो उनके पिताजी ने उनको वनवास जाने के लिए कह दिया था, डायरेक्ट नहीं कहा था, कैकेयी से कहा था, तो भगवान अपने पिता के सत्य धर्म का पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले गए। जो प्रभु वैकुंठ के और समस्त उच्चतर लोगों के सबके स्वामी हैं, सारा धन जिनका है, वे अयोध्या का राज छोड़ करके वन में चले गए। कंद मूल फल खाते थे, कुश पर सोते थे, जमीन पर सोते थे, पत्थर पर बैठते थे, कभी भगवान ने अन्न नहीं खाया, पकवान नहीं खाया 14 वर्ष तक, और जटा बना करके रहते थे। कुंती महारानी कहती है कि अद्भुत आपकी लीला है, अद्भुत आपका कर्म है, जो सर्वेश्वर है, सर्व जगत के भोक्ता है, स्वामी है, सबको यज्ञ फल देते हैं, सबको कर्म का फल देते हैं, और वे प्रभु ऐसी लीला करें जैसे कर्म में बंधा हुआ कोई मनुष्य अपने कर्म का फल भोग रहा हो, जंगल में वास कर रहा है। ओहो अद्भुत आपकी लीला। और इसी तरह से आप ऋषियों में जन्म लिए, नर नारायण ऋषि के रूप में, और जीवन में उन्नति के लिए आप तपस्या कर रहे थे। आपको कौन सी उपलब्धि बाकी है, कौन सी पूर्णता आप में नहीं है, आप क्यों तप करेंगे, लेकिन फिर भी आप तप कर रहे थे। आपकी लीला अत्यंत विडम्बनम है, तो अत्यंत युक्ति और तर्क से अगोचर है। और जलचरों में आपने मत्स्यावतार आदि लिया, एक दीनहीन मछली की तरह आप सत्यव्रत महाराज से बात कर रहे थे कि महाराज मुझे समुद्र में मत छोड़िए, हमसे बलवान जलचर हमको खा जाएंगे, ऐसे भगवान बोल रहे थे। ये आठवें स्कंध के 24वें अध्याय में कथा है। सत्यव्रत महाराज जो हम लोगों के मनु महाराज हैं, इस समय स्नान कर रहे थे, स्नान करके जल दे रहे थे भगवान को। तब तक उनकी अंजलि में एक छोटा सा मत्स्य, छोटी सी मछली आई, तो पानी के साथ ही उन्होंने छोड़ दिया, पानी नदी नदी में छोड़ दिया। वो मत्स्य मनुष्य की भाषा में बोला कि महाराज आप परम दयालु राजर्षि हैं, आपको पता नहीं है कि जलचर जीव, बड़े बड़े जलचर जीव छोटे जीव को खा जाते हैं, आप हमें क्यों छोड़ रहे हैं पानी में, हमारी रक्षा कीजिए, हमको मत छोड़िए, नहीं तो हमको दूसरे मत्स्य खा जाएंगे। तो राजा सत्यव्रत को दया आ गई और उन्होंने मत्स्य को निकाल करके अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल में लेकर के जब घर गए तो कमंडल जितना साइज का था उतना बड़ा हो गया, तो छोटी सी सीधरी, छोटी सी सफरी, छोटी सी छोटा सा मत्स्य और पूरे कमंडल में अट गया। देखते देखते राजा कहा कि महाराज यह जल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ अधिक जल जहां हो ऐसे स्थान में छोड़ी। तो महाराज अपने घर के एक टंकी में छोड़, थोड़ा बड़ा था, उसमें एक घंटे के बाद ही वो बढ़ गया। उन्होंने महाराज ये जल हमारे लिए कम पड़ रहा है, तब उन्होंने अपने घर के कुकर में पुष्करणी में छोड़ दिया, छोटा सा तालाब था उसमें छोड़ा, उसमें भी रात भर में बढ़ करके पूरा इस तट से उस तट हो गया। और फिर कहने लगा कि यह जल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, हमको कहीं और छोड़वाइए। तो महाराज अपने सेवकों को लगा करके और बड़े ही आराम से उस बड़े मत्स्य को नदी में छोड़े। एक रात में वो पूरा भर गया दोनों तट से, ऐसे चौड़ा और लंबा बहुत, और फिर भी रो रहा था, महाराज मुझे कहीं और छोड़िए। तो महाराज किसी उपाय से उसको समुद्र में छोड़े। समुद्र में जब उस मत्स्य को छोड़े तब मत्स्य कहा, महाराज आज से सातवें दिन इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, पर आप घबराइएगा मत, सृष्टि के सारे बीज को और सप्तर्षियों को लेकर आप एक नौका पर चढ़िएगा, आपके पास एक नौका आएगी और उस नौका को रस्सी से वासुकी नाग आपके पास आएगी, उसको लेकर मेरे सिंह में बांध दीजिएगा और मैं जब तक प्रलय निशा रहेगी, जब तक प्रलय रात्रि रहेगी तब तक मैं उस नौका को खींचते हुए विहार करूंगा। तो इस प्रकार की लीला शुरू से अंत तक करना, क्षण भर में इतना बढ़ जाना, बात होना और मनुष्य की तरह बात करना, और ये तमोगुणी शरीर ग्रहण करना। यदि भगवान तमोगुणी नहीं है तो चिन्मय है, पर बाहर की दृष्टि से मछली बनना, सुअर बनना, कछुआ बनना, क्या है अत्यंत विडम्बना, अत्यंत समझ से बाहर है। क्यों ऐसा आप करते हैं, आपकी लीला अद्भुत है। अगर यह माना जाए कि सचमुच में आप नकल करते हैं, लीला नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं संभव है। आपका आवेश होता है, आप सुअर बने तो ऐसा नहीं कि सुअर की नकल कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति नकल करता है तो रस का आस्वादन नहीं कर सकता है, जब तक आवेश नहीं होता है तब तक वो रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। भगवान कोई भी लीला करते हैं तो आविष्ट होते हैं, उनकी अपनी स्वरूप शक्ति है, योग माया है जो भगवान को भगवान के रूप में ही रखती है, फिर भी भगवान को कुछ देर के लिए ऐसे भावना पैदा करती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण में ये भाव है कि मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, जसोदा का पुत्र हूं, और जसोदा और नंद में यह अनादि काल से स्वरूप शक्ति ने भावना रखी है कि कृष्ण मेरा पुत्र है। और वास्तव में कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, सब उनके उत्पन्न किए हुए। नंद बाबा या जसोदा आदि सब उनके शक्ति से शक्ति के परिणाम हैं, पर फिर भी ये अनादि काल से ये भावना है नंद बाबा की, कृष्ण मेरा बेटा है। और कृष्ण में यह नर अभिमान, अभिमान का अर्थ धारणा कि मैं नर हूं, मैं एक गोप हूं और नंद महाराज हमारे पिता हैं, यही भावना अस्थिर बनी रहती है और ये अनंत काल तक रहेगी, ये कभी टूटेगी नहीं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का इन लीलावतारों में आवेश रहता है और भगवान किसी सुख के लिए अवतार लेते ही रहते हैं और देखा जाता है कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं और भक्त के द्वेषियों पर निग्रह करते हैं, दंड देते हैं। परंतु दोनों ही लीलाएं उनकी एक है, श्री कृष्ण चाहे मारे या तारे, श्री कृष्ण का थप्पड़ उतना ही लाभकारी है जितना उनका आलिंगन, उसे कोई अंतर नहीं है। कुंती महारानी इस रहस्य का उद्घाटन कर रही हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मन त्रियंग मृत शिशु जादह तदत्यंत विजंबन। ये अद्भुत लीलाएं आपकी होती है, सभी जोनियों में आप अवतार लेते ही रहते हैं और अवतार लेकर के जन्म लेकर के विविध कर्म भी करते हैं, तो आपके जन्म और कर्म दोनों सत्य हैं। सत्य नहीं होते तो भगवान कैसे कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, मैं जो कर्म करता हूं वो बंधन नहीं करता है और मनुष्यों की तरह मैं किसी आवश्यकता में बंध करके किसी लाभ के लिए किसी प्राप्तव्य के लिए कर्म नहीं करता, कोई कर्म उन्हें बांध नहीं सकता है। नमे कर्म फले स्प्रिया, किसी कर्म फल में हमारी स्प्रिया नहीं होती, भगवान कहते हैं कोई कर्म मुझे बांध नहीं पाता है। तो इस प्रकार कर्म तो करते हैं लेकिन संसारिक लोग तो यही जानते हैं भगवान अजन्मा है और भगवान अकर्ता है, भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान बस ऐसे हवा जैसे आकाश जैसे है, ऐसे ही लोग मानते हैं, है ना। और वास्तव में ईश्वर के प्रति भगवान के प्रति बहुत लोगों की धारणा है कि भगवान है, लेकिन क्या है कैसे है इसके बारे में ज्ञान बहुत कम लोगों को है। हम भी मानते हैं भगवान को लेकिन वो एक शक्ति है ऐसे कहते हैं स्वामी जी, ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं हम मानते हैं लेकिन वो एक शक्ति के रूप में, शक्ति माने क्या बिजली के करंट के रूप में है, शक्ति के रूप में, महारानी कुंती के सामने जो है वही उनका वास्तविक स्वरूप है भगवान का, और वे विविध अवतार लेते ही रहते हैं, विविध जन्म लेते ही रहते हैं। तो भगवान के जन्म कर्म सत्य हैं, इसीलिए तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म हैं निश्चित लेकिन ये दिव्य है। दिव्य का अर्थ है अलौकिक, देवताओं जैसा मनुष्यों जैसा मेरा जन्म नहीं होता है और मैं इस तरह से कर्म नहीं करता हूं। यहां जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर के करता है, उसे करना ही पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं नहीं कश्चित क्षण अपनी जात तिष्ठते कर्म के, एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, प्रकृति उसे दबाव डालती है। जैसे मान लीजिए 10 बजते बजते प्रकृति इतना भूख पैदा करती है कि अब चूल्हा जलाना ही पड़ता है, बनाओ, इसको कर्म कहते हैं, बाध्य है मनुष्य कर्म करने पर, उसे भोजन बनाना पड़ेगा और किसी की नाक दबा दी जाए तो सांस लेने के लिए मरने लगेगा, उसे कर्म करना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, बाध्य है, स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्र इच्छा से व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है। और कोई रात को सोता है तो ऐसा नहीं है कि भगवान नारायण जैसा सोता रहे, उसे उठना ही पड़ेगा, नहीं तो सोने पर रोगी हो जाएगा, भारी शरीर होगा, उसे जगना पड़ता है। यह कर्म करना, कोई भी कर्म व्यक्ति कर रहा है वो प्रकृति के गुणों के दबाव में है। कारणम गुण संगोष्ठी संसद जोनी जन्म से सत या असत, छोटी या बड़ी योनियों में, निकृष्ट या उत्कृष्ट योनियों में जीव जन्म लेता है, इसमें कारण क्या है? गुण संग, प्रकृति के गुणों का संग भी बाधित करते हैं। लेकिन भगवान तो निर्गुण है, गुणों से परे है, बल्कि प्रकृति के गुणों के वीर नियामक हैं, अतः उनका कर्म दिव्य हो गए हैं। मनुष्य जैसा, अन्य जीवों जैसा या देवताओं जैसा उनका कर्म नहीं है, दिव्य है। ऐसा दिव्य उन कर्मों को यदि कहा जाए, उसका वर्णन किया जाए, कीर्तन किया जाए और श्रवण किया जाए, तो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्गम्। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस रहस्य को जो जान जाता है तो मेरे जन्म और कर्म का वो कीर्तन करता है, श्रवण करता है, और ऐसा व्यक्ति यह देह त्यागने के बाद फिर दूसरा प्राकृत देह ग्रहण नहीं करता, वो अपने स्वरूप में आ जाता है। मान एति, भगवान कहता हूं मेरे पास आ जाता है। पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म में नहीं आता है। भगवान श्रीकृष्ण चूंकि इस प्राकृत जगत में प्रवचन कर रहे हैं तो कहते पुनर्जन्म न एति, प्रकृति के बंधन में जन्म मरण में नहीं रहता। माम एति, मेरे पास आ जाता है, मेरे पास आता है। तो भगवान कहते मेरे पास आता है, तो भगवान का तो स्वरूप सामने है, तो जीव का भी वही स्वरूप होता है, तो भगवान का परिकर बनकर के, पार्षद बनकर के भगवान के पास चला जाता है। ये नहीं कि भगवान एक भूत है और दूसरा भूत उनके पास चला जाता है, मेरे पास आ जाता है अपने स्वरूप में होकर। आजकल की अजीब रीति है, भगवान के बारे में कहा जाता है कि सुनो सुनो सुनो, तो अधिकांश लोगों की रुचि सुनने में नहीं है, झूठा ऐसे ही कुछ आंख बंद करके ऐसे ऐसे करके चक चक देखते, ईश्वर का ध्यान करते, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं ध्यान क्या करोगे, वही पता होता तब न कि क्या है तब न ध्यान करेंगे, ऐसे क्या ध्यान करेंगे। दिन भर जब दुकान में काम किए हैं या फैक्ट्री में ऑफिस में, तो आंख बंद करेंगे तो वही देखेंगे, दूसरा क्या दिखाई देगा। भगवान के बारे में जानने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है सुनना, अभिज्ञों से, जो भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, ऐसे महान पुरुषों से, वैष्णवों से सुनना चाहिए। जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य यही है सुनना। सुनने से तब भगवान प्राप्त होते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति मिलती है। तो महारानी कुंती भगवान के जन्म कर्म के विषय में बोल रही हैं, यह विषय स्वयं ही भगवान के द्वारा भगवद गीता में कहा हुआ है और श्रीमद् भागवत में भी कई बार कही, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। दिव्य तो है, पर महारानी कुंती कह रही हैं कि बुद्धि में समझ में नहीं आ सकता, इसीलिए लोग नहीं समझ पाते हैं ना भगवान को। जन्म की बात सुनते हैं और तो और ऐसा वर्णन है रामचरितमानस में कि भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम में मलय पर्वत पर गए थे कथा सुनने के लिए, और वही राम कथा। अगस्त जी भगवत कथा के महादानी हैं, तो भगवान शिव अपने घर से कैलाश से गए कथा सुनने के, खूब अच्छी से कथा हुई, भगवान राम के विषय में ही भक्ति सिद्धांत भी हुआ। अगस्त जी ने कथा कहा और भगवान शिव ने भक्ति रसामृत सिंधु से प्रवचन किया, तो भक्ति का तत्व का वर्णन किया। तो इसके बाद कथा सुन करके भगवान शिव चले मुनि से विदा लेकर के, उसी समय भगवान का अवतार हुआ था श्री राम के रूप में। और वो भी घटना क्या थी, दंडक वन में सीता का हरण हो चुका था, ये सब भगवान की ही योजना थी, और भगवान सीता का अन्वेषण कर रहे थे, खोज कर रहे थे। कैसे खोज कर रहे थे, वे वृक्ष से पूछ रहे थे कि हे वृक्ष, तुम्हारा शिखर ऊंचा है, तुम्हारी आंख बहुत दूर तक जाती है, सीता को तुमने देखा है क्या? लता और वृक्ष, खग मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, हे भौरे हे पक्षियों और हे हरिण आदि पशुओं क्या तुमने सीता को देखा है। पागल जैसे बिल्कुल पूछ रहे थे। इतना पागल तो आज के युग में भी कोई नहीं होगा, चाहे कितना भी स्त्री लंपट हो लेकिन पेड़ से तो पूछने नहीं जाएगा, है ना। वो कह देगा टेलीविजन वालों को टीवी में कि निकाल दीजिए, फोटो देगा कि हमारी प्रिया खो गई है, इसका ये चेहरा है, कहीं मिले तो आप हमको सूचना दीजिए और इतना आपको इनाम भी दें। रेडियो में टीवी में सब देता है। लेकिन ऐसा पागल कि जो पत्थर से पूछे कि हे पत्थर सीता तुम पर बैठती थी मेरे साथ, तुमने देखा सीता कहाँ गई, हे गोदावरी नदी तुमने सीता स्नान करती थी आती थी तुम देखी हो कहाँ है, हे अशोक वृक्ष हे पीपल हे अश्वत्थ हे पाकर तुमने देखा है। लताओं से भगवान पूछ रहे थे, भौरों से पूछ रहे थे। इस लीला को भगवान शिव ने देखा तो दूर से ही कहीं सच्चिदानंद पर धामा, भगवान को देख करके प्रणाम किया और कहे जय सच्चिदानंद आपकी अद्भुत लीला। क्योंकि भगवान शिव तो ज्ञानियों में भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वो तुरंत समझ गए भगवान ने लीला करो। परंतु भगवान की उस लीला को सती जी ने भी देखा, भगवान शिव की पत्नी भी देखी। जब शिव जी प्रणाम कर रहे थे भगवान को तो उस समय भी देखे, और भगवान की पत्नी सोचने लगी, सती जी सोचने लगे क्या हो गया शिव जी को, पागल हो गए क्या, एक मनुष्य राजकुमार को आज प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा सुरमुनि नर सब नावत शीशा तेहि नृप सुत ही किन्ह प्रणाम प्रणाम कैसे चिदानंद पर धाम। जिनको देवता दैत मनुष्य सभी पूजते हैं, जो विश्वेश्वर हैं, इस जगत के ईश्वर हैं, आज इनको क्या हो गया कि आज एक राजकुमार की पूजा करने लगे, प्रणाम करने लगे, और वो भी सच्चिदानंद पर धाम कहकर। पर धाम ये क्या देख रही हूं, देख क्या रही, उसकी बुद्धि खत्म हो गई थी लीला देख करके। अब तो युक्ति और तर्क के अगोचर है। कुंती महारानी कहती है भगवान की यह लीला, श्रीमती सीता देवी को खोजने की लीला, सती के दिमाग को चौपट कर दिया, एकदम नहीं समझी। पर भगवान समझ रहे थे, भगवान शिव समझ रहे थे कि ये परब्रह्म भगवान की परमात्मा की लीला है। तो शिव जी जब जा रहे थे रास्ते में तो उनको प्रणाम करते हुए भी सती ने देखा था, और रास्ते में वो बार बार देखती है कि शरीर में पुलक हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहा है, और राम राम कह रहे हैं तो वाणी गदगद हो रही है। उनको एकदम चिंता हो गई कि लगता है हमारा हस्बैंड बिल्कुल खत्म हो गया, पागल हो गया। उनके मन में यही आया कि ये क्या हो गया, संसार का ईश्वर एक राजा के लड़के को प्रणाम करे, मनुष्य को। भगवान शिव देख रहे थे सती जी पर, वो समझ गए कि अरे इसका तो मन कहीं और गया है, चिंता में पड़ी हुई है। भगवान शिव कहते हैं सुनहु सती तव नारी सुभाऊ संशय असन धरिए उरकाल। सती मैं जानता हूं ठीक है तुम स्त्री हो, स्त्री का ऐसा स्वभाव होता है शंका करना संशय करना, लेकिन ऐसा संशय मत करो, राम पर संशय नहीं करो। अभी अभी राम जिनकी कथा हम सुन करके आए और हमने भक्ति तत्व का वर्णन किया, वही हमारे इष्ट देव हैं, भगवान हैं, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हैं और ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते हैं, इसलिए छिप करके लीला करते हैं कि इनको कोई भगवान के रूप में न जान जाए, नहीं तो रावण इनसे बैर नहीं करेगा, मनुष्य समझ करके बैर किया है। तो भगवान शिव इसीलिए नहीं गए निकट, समझा रहे थे तुम संशय मत करो, ये मत करो। लागन उर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, शिव जी ने बार बार कहा, बार बार प्रीच किया, लेकिन हृदय में उपदेश लग नहीं रहा था, क्योंकि भगवान राम के हृदय को देखने वाले हैं, वो लगने ही नहीं दे रहे थे उपदेश। भगवान शिव जैसा प्रीचर प्रीच कर रहा, वो भी अपनी पत्नी को, वो भी सर्व देव शिरोमणि देवी शिरोमणि अपनी पत्नी को कितनी आशा से समझा रहे होंगे, ये सब तुम्हारे मन में क्यों संशय आ रहा है, वो साक्षात भगवान है, वो मनुष्य नहीं है, परब्रह्म है, परमात्मा है, जगदीश्वर है, सच्चिदानंद घन है, लेकिन लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बार बार भगवान शिव समझाए लेकिन उपदेश काम नहीं किया। नहीं नहीं मैं नहीं मान सकती। वो लड़का साफ अपनी पत्नी को पत्ता से वृक्ष से पूछ रहा है और हरिण से पशुओं से पूछ रहा है, आप कहते हैं वो भगवान है, अब हमको सिखा रहे हैं। आप अपनी बुद्धि को पहले देखिए, आपको जो हुआ है ना, जो आपको तो कोई न कोई मनोवैज्ञानिक हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, आपको क्या हो गया। भगवान शिव माता धनते क्या हो गया इसको, और वो चिंतित है कि इसको क्या हो गया। भगवान शिव को हंसी आ रही है कि भगवान सबके हृदय में है, कृष्ण इसको समझने क्यों नहीं दे रहे। भगवान की माया का बल जानकर भगवान शिव हंसने लगे और कहे, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले, अगर तुम्हारे मन में अच्छे संदेह है राम के प्रति कि ये भगवान है या मनुष्य है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो कि ये भगवान है कि मनुष्य है। तो उसने कहा, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी तब तक आप कितने कोस दूर चले जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, नहीं मैं यहीं बैठता हूं, तब लग बैठी अहं बट छाई जब लग तुम अहं मही पाई, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बैठे रहूंगा। ये बट वृक्ष पहचान लो, लोकेशन देख लो। दिखा रहे थे इस बट को, देख लो कि यहां आने में दिक्कत ना हो। और सब नाला पहाड़ आदि जो है सबको देख लो, यहां आना, यहां मैं बैठता हूं। उसके मन में इतना संशय था कि उस समय चल दे ठीक है मैं परीक्षा लेना चाहती हूं। परीक्षा लेने के लिए चली जैसे कोई चींटी समुद्र का थाह लेने चले कि कितना पानी गहरा है, तो भगवान राम की परीक्षा लेने चले। परीक्षा का क्या उपाय बचा, क्या परीक्षा लू। उसने सोचा कि जिस सीता के विरह में लड़का घूम रहा है वन में, तो मैं उसी सीता का वेश बना करके सामने हो जाऊं, तो देखते ही वो कहेगा, आहा मेरी प्रिया सीता तुम खो गए थे, कहां गए थे, कहां लुट गए थे, तब तो मैं जान जाऊंगी कि ये मनुष्य, और मैं आकर उनसे कहूंगी, अपने पति से कहूंगी कि देखिए हमको वो सीता समझ लिया, यही है भगवान। ये सोच करके पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही जही आवत सुरभूत। जिस रास्ते से भगवान सीता को खोजते हुए, कंदरा में झांकते हुए, वृक्षों से पूछते हुए, या हरिण से पूछते हुए, भ्रमरों से पूछते हुए आ रहे थे, उसी पंथ से पार्वती सती जी चली, जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा सीता जी सती जी को, तो सती जी सीता हो गई थी, तो देखा तो समझ गए कि ये सती है, लेकिन सीता का मेकअप करके आई। तो लक्ष्मण जी एकदम चुप रहे, जानते थे भगवान को जो करना होगा करेंगे, हम क्या बोले, वो तो सब जानते ही हो। कहीं न सकत कछुवती गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। चुपचाप रह गए, देखे भगवान क्या लीला करते हैं। लक्ष्मण जी पीछे थे ही, और पीछे हो गए भगवान राम आगे जाने। भगवान श्री राम ने तुरंत समझ लिया कि ये माता पार्वती जी हैं, सती जी हैं। उनको तो और नरलीला करनी थी, गए पितु समेत, पिता के साथ ही अपना नाम लिए, मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं, अयोध्या से आया हूं, माता जी आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। ये परीक्षा हो गई, और प्रणाम करके प्रश्न भी कर दिए, पूछे वो बहुरी कहां वृष के तू, विपिन अकेली फिरहू कही है तू, और भगवान शिव कहां है, आप अकेले किस पर्पज से जंगल में घूम रहे हैं। यह अद्भुत प्रश्न था, कोई विवाहिता स्त्री और अपने पति के अलावा वो भी जंगल में घूमने लगे, ये प्रश्न होता है ना, क्या हो गया। हमेशा प्रसिद्ध बात है कि भगवान शिव चलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ नंदीश्वर पर चलते हैं, ये पैदल भी चलते हैं तो साथ में चलते हैं, क्या बात है कि आप आज अकेले घूम रही हैं, कहां है भगवान शिव। बस इतना पूछना था कि सती का दिमाग अब खुला जाओ, ये मैंने क्या किया, अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया, ये तो सती साक्षात भगवान है, कैसी कोई अगर लड़का रहता तो कैसे जान जाता कि मैं सती हूं। खूब अच्छा श्रृंगार किया था उन्होंने, तो सीता जी के समान ही है परम सुंदरी, अब तो अब सामने प्रश्न है कि अब मैं शिव जी से क्या कहूंगी, अपने पति से क्या कहूंगी, चिंता में पड़ गई। तब तक देखी कि सीता का हरण नहीं हुआ है, राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं, इधर देखती तो उधर भी राम सीता लक्ष्मण, आगे भी पीछे भी सब ओर, और उसके बाद उसने देखा कि सारे देवता ऋषि गंधर्व पितर सब राम की सेवा कर रहे हैं, सब फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और सीता का हरण हुआ ही नहीं है। देखी इस तरह से देखी और विराट सेवा करते हुए राम की सब तरफ, तो रास्ते में ही आंख बंद करके बैठ गए, जो आंख बंद करके बैठी तो इसके बाद आंख खोली तो देखी कि कोई नहीं है, राम वो लक्ष्मण जा रहे हैं, वैसे ही खोजते हुए फिर से अब तो चली, अब तो धक धक कलेजा करने लगा कि अब क्या कहूंगी, लेकिन झूठ बोलने में स्त्रियां बहुत आगे होती हैं, ये सब के बाद जब भगवान की पत्नी भी झूठ बोल सकती है, सती जी सोचने में क्या कहूंगी क्या कहूंगी, तो गई गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात, भगवान देखे तो हंस करके पूछे कुशल से हो ना, हाउ आर यू, अब ठीक हो, ठीक से हो ना, कुछ अस्वस्थ दिख रही हो, ठीक है ना, अच्छा वो परीक्षा किस विधि से लिया, भगवान ने दो शर्त रखा, सब बात कहो और सत्य कहो, एक भी बात छोड़ना मत और बात बदलना में झूठा मत बोलना, सत्य बोलो और सब बोलो, किस विधि से परीक्षा लिया, हंस करके भगवान शिव ने पूछा। वो तो क्या कहते, देखिए कछु न परीक्षा ली गोसाई किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कोई परीक्षा नहीं ली, जब मैं रास्ते में जा रही थी ना तो मेरा विचार बदल गया कि मेरे पति जो कहते हैं वही सत्य है, तो मैं जाकर के राम को प्रणाम की, तुम जो कहा सो मूर्छा न हो, आप जो कहे कि वो लड़का भगवान है वो राजकुमार नहीं है, बिल्कुल सत्य कहे आप, लेकिन जब मैं रास्ते में जा रही थी उसी समय मेरा विचार बदल गया था, आखिर आप जो कहते हैं वो झूठा कैसे हो सकता। तब शंकर देखे धरि ध्यान सती जो किन चरित सब जाना, तब भगवान शिव उसके चेहरे को और सब देख करके समझ गए कि कुछ कपट कर रही है, झूठ बोले भी इतना फॉरवर्ड इतना फ्रैंक बोलना कि दूसरा आदमी तो मान ही जाता कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन भगवान शिव लक्षण से ध्यान धर करके देखे और देखे कि यह सीता का रूप बनाई थी, ये की थी, राम प्रणाम किए इसको, इसने प्रणाम नहीं किया, और यहां कहते हैं कि मैं प्रणाम की, बस प्रणाम किए, कोई परीक्षा नहीं ली। तो इस प्रकार मेरे कहने का आशा है कि जब देव शिरोमणि भगवान शिव के संग में रहने वाली स्त्री भगवान राम के विषय में इस तरह से धोखा खा सकती है, ये समझे कि ये राजकुमार हैं, तो फिर आजकल के मनुष्य अगर राम को भगवान न माने तो कौन आश्चर्य की बात है। वो तो एक नंबर के गधा है, वास्तव में कोई ब्रेन है नहीं। तो राम कोई मनुष्य माने क्या आश्चर्य है। और भी लोग कहते हैं कि नहीं, राम हुए ही नहीं, ये वाल्मीकि ने कल्पना करके लिख दिया। वाह, ऐसा ऐसा दिमाग भिड़ाते, ऐसा ऐसा दिमाग लगाते हैं। तो भगवान की ये लीलाएं अद्भुत हैं। श्रीराम अवतार में इतना रोना सीता जी के लिए और सीता जी की खोज करना, इस तरह से वास्तव में बड़े बड़े विद्वानों का भी माथा चक्कर में पड़ जाता है कि क्या है ये। अगर यदि भगवान है विष्णु जो सुरहित नर तनधारी सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरा, यदि विष्णु, सती जी ने तर्क किया था, मन में सोचा था कि अगर मान लीजिए भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं तो भगवान विष्णु तो शिव जी जैसे सर्वज्ञ हैं। खोजई सो की अज्ञी व नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, भगवान विष्णु तो असुरों के शत्रु हैं, ज्ञान के धाम हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, वो एक अज्ञ व्यक्ति की तरह क्यों सीता की खोज करेंगे, क्या नहीं जान जाएंगे कि कहां गई है, रावण ले गया है या यहां है वहां है, क्यों खोजेंगे। पर भगवान की लीला ही वास्तव में ऐसी है तो बड़े बड़े विद्वानों को चक्कर में डाल देती है, क्या सत्य है वास्तव में, ये क्यों भगवान कर रहे हैं। न वेद कश्चित भगवान चिकित्सितम, इसी तत्व पर आ रही है महारानी कुंती की, आपकी अद्भुत लीलाएं होती हैं और उसमें भी नर विडम्बनम तु अति आश्चर्य, आपकी जो नर लीला होती है तो अद्भुत, उसमें मैं नर लीला कहा भगवान की, लेकिन कुंती महारानी स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण की नर लीला को कह रही हैं। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिताम तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रम् निमीय भयभावनया स्थितस्य सा माम् विमोहयति भीमपि जद्विभेति। कुंती महारानी कहती हैं जत भी अपि विभेति, आप ऐसे हैं कि आपसे साक्षात भय भी भय करता है। साक्षात भय में तो काल, मृत्यु या काल भी जो सारे जगत का कंट्रोलर है वह भी आपसे डरता है। भागवत में कई बार बात आई है भगवान विष्णु से, कृष्ण से काल भी डरता है, लेकिन आप ऐसी डरे हुए थे मां जसोदा के रस्सी उठाने पर, उस समय की आपकी जो दशा मैं सोचती हूं तो मां विमोहयति, आपकी वो दशा मुझे विशेष मोह में डाल देती है, भ्रम में डाल देती है। एक बार की बात है, कार्तिक में अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन मां जसोदा दही मथने लगी, दासियों को दूसरे काम में लगा दिया, दही मथ रही थी। दही इसलिए मत रही थी कि गोपियों का उलाहना उसके घर में बारंबार आता रहता था कि आपका लाला आज मेरा दही खा गया, माखन खा गया, मटका फोड़ दिया, दूध गिरा दिया, ये किया वो किया, और प्राय खाने की मिला कि मेरा दूध पी गया, तो दही पी गया, मट्ठा पी गया, माखन खा गया, और सभी घरों से और रोज रोज उलाहना आ रही थी। यदि गोपियां स्वयं ही चाहती थी कृष्ण आवे खाए, लेकिन कृष्ण से जब पूछती थी तुमने चोरी किया तो ऐसे उत्तर देते, नहीं तुम्हारा कहां घर है, मैं तो तुम्हारा घर जानता भी नहीं हूं, किस मोहल्ले में है, और उसी घर में पकड़ा गया। तुमको इतना पता नहीं चल रहा है कि तुम दूसरे के घर में आए हो, तो फिर कौन, ओहो मैं तो अपने घर के धोखे में आ गया, अरे और मेरा ध्यान गया कि ये दूसरे का घर है। तो ये तो गोपी के लिए और आनंद की बात थी कि उसने उसको अपना घर कहे, लेकिन अपने घर के धोखे में आया, मैं तो अपने घर के धोखे में आ गया। ओहो ठीक है चलता हूं। नहीं नहीं तुम जान बूझ करके खाए हो, ये किए हो पिए हो, मां यशोदा के पास पकड़ करके ले जाते थे, लहना देते थे। मां यशोदा कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटा के लिए कोई उलाहना आवे, कोई चोरी आने का काम करे, पर बार बार उलाहने सुनने से उसको चिंता हो गई। चिंता हो गई कि वो अपने घर में पद्मगंधा गाय का दूध गरम करके और उसमें जो जामुन डाली और दही मथने लगी दीपावली के दिन, इतना सुंदर माखन निकालूंगी और इतना सुंदर दही जमाऊंगी कि मेरा बेटा उसको खाएगा तो किसी के घर की ओर मुंह नहीं करेगा, दूसरे के यहां जाएगा। इसके लिए कृष्ण की सेवा के लिए दही मथने लगी, इसके पहले कभी भी दही नहीं मथी थी। वो तो ब्रज की रानी है, नंद बाबा की गृहिणी, वो क्यों दही मथ, लेकिन उस दिन मथने लगी। उसको बहुत परिश्रम पड़ रहा था, एक तान होकर गान कर रही थी, बहुत विस्तार से लीला है। तो श्रीकृष्ण की नींद खुल गई, श्रीकृष्ण भोर में उठ गए, मां के साथ ही मां की गोद में वो सोते थे और मां दही मथ रही थी, तो श्रीकृष्ण की नींद खुली और ये करते हुए आंख मलते हुए देख के इधर करवट बदलते हुए तो मां है नहीं, फिर आवाज सुने कि मां उधर कुछ गा रही है, वो कृष्ण की लीला गा रही थी और दही मथ रही थी। वहां चले गए और मंथन दंड को पकड़ लिए, तो मंथन दंड चला नहीं, मथानी बंद हो गई, तो मां ने देखा तो श्रीकृष्ण उसको रोक करके मां का बांह पकड़ करके, इसके बाद मंथन दंड पकड़े, बांह पकड़े, बांह पकड़ करके गोद में चढ़ गए और मां का दूध पीने लगे। सहज अधिकार है उनका, पूछे नहीं, मां से परमिशन की कोई जरूरत नहीं थी। और मां यही देख रही थी क्या करता है, तो पहले तो मंथन दंड रोक दिया, तब मां की बाह्य वृत्ति हुई, पर देखने लगी क्या करता है। तो मटका, वो मंथन पकड़ा, बांह पकड़ा, एक पैर मटका के मुख पर दिया और गोद में चढ़ा। मां को बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि इसका बल और इसकी बुद्धि बढ़ रही है, देखिए ऐसे चढ़ गए। जानता था कि मंथन दंड को रोकूंगा तब ये बाहर ध्यान देगी, नहीं तो ये तो कृष्ण के चिंतन में थी। दूध पीने लगे भगवान, मां पिलाने लगे, वो अप्राकृत जगत का दिव्य दूध कम नहीं हो रहा था और भगवान की भूख नहीं जा रही थी, भगवान प्रेम रस के भूखे हैं। ये दूध पीते जा रहे थे, मां पिलाती जा रहे थे, तब तक पास में ही पद्मगंधा गाय का दूध होटा जा रहा था, तो उसमें उफान आ गया। तो मां ने सोचा कि अपने छाती का दूध तो अपने पास ही है, बाद में इसको पिला दूंगी, एक गाय का दूध उफान करके जल करके राख हो जाएगा, तो पहले उसको उतार दो। वास्तविक बात यह थी कि अप्राकृत जगत में प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, जीवित है। दूध ने सोचा कि भगवान तो मां का दूध पी रहे हैं, मां का दूध अमृत है, स्नेह से भरा हुआ, तो उसी दूध से इनका पेट भर जाएगा, तो मैं जो आग में जल जल कर तपस्या कर रहा हूं तो मेरा जीवन तो बेकार जाएगा। इसलिए मां के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए उसने सोचा कि आत्महत्या करूं, और दूध ने सोचा तो उफन करके आग में गिरने जा रहा था, तब तक मां की दृष्टि पड़ी, वो कृष्ण से बिना पूछे हटा करके जमीन पर रख दी, कृष्ण को रख करके और दौड़ी। तो उस मां का दौड़ना देख करके, आना देख करके दूध शर्म के मारे नीचा हो गया, ओ मैंने मां के प्रेम सुख में बाधा दिया, दूध नीचे आ गया, इसमें जल नहीं डालना पड़ा। मां ने देखा, यशोदा जी ने देखा कि दूध पक गया है पूरा, तो उसको उतार दिया, उतार करके अब आई जहां दही मथ रहे थे कृष्ण को, जहां जमीन पर रखा था वहां आए तो देखा कृष्ण यहां नहीं, और मटका भंग हो गया है, टूट गया है, फोड़ा गया है, दही सब फैल गया है इधर उधर। क्यों मटका भंग हुआ था, क्यों फोड़े थे मटकी भगवान? उनको क्रोध है आया कि मैं अभी भूखा इसका दूध पी रहा था और मेरी परवाह न करके मुझे जमीन पर पटक करके दूध बचाने चली गई। वाह वाह, थोड़ा सा दूध जल जाता तो क्या होता है, इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं, हमारी कोई सेवा नहीं है, दूध को बचाने दौड़ी तो मैं कितना नुकसान कर देता हूं तुमको बता रहा हूं। तो भगवान तो अपने लाल लाल ओठों को उज्जवल दांतों से दबाए और जसोदा उधर गई, तो सोचने लगे कैसे इसको दंड दूं जसोदा को, मां को। तो पास में एक लोढ़ा था, एक मसाला पीसने वाला पत्थर था, उसे ले करके और मटका के पेंदी में मारे, ऐसे मारे कि आवाज न हो और दही सब फैल जाए। मारे तो फिर छेद हो गया, बलबल बलबल कह करके दही चारों तरफ बहुत। अब तो ये अपराध तो हो गया है, लेकिन बच्चों के मन में भी बहुत क्रोध होता है और वो अपने क्रोध को मां से ही दिखाते हैं, अपने क्रोध, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं ये करूंगा, मां मनाती है। तो कृष्ण को इस तरह मां से क्रोध हुआ, क्यों हमको छोड़ करके गई, हमारा पेट भर जाता तब इसको जाना चाहिए था, अभी मुझे भूख रही, मैं भूख से मर रहा हूं और मुझको जमीन पर रह करके चली गई, तो मैं इसके घर के सामान को बर्बाद करता। थोड़ा दूध बचाने के लिए ना हमारी उपेक्षा की, मैं इतना धन, ऐसे कई गुना धन बर्बाद कर दूं, ये सोच करके वो फोड़े थे, और फोड़े दही फैल गया तो सोचने लगे अब कैसे भागे। तो वही प्रभु जो तीन पग में पूरा ब्रह्मांड नापे थे, अब वो फैले हुए दही को नहीं लांग पा रहे थे, कैसे जाए कैसे जाए, तो उसी पर छप 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 पैर दे करके भागे। तो मां आई तो देखी दही का मटका फूटा हुआ है, और इसके बाद देखा कृष्ण नहीं है, तो उसके समझने में देर नहीं लगी कि किसका काम है, वो हंसने लगे। थोड़ा सा दूध दही फैल जाना, मटका टूट जाना, उसके लिए कोई दुख की बात नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे की लीला का स्मरण करके हंसी आने लगे। अच्छा, क्रोध उसको आया, मटका फोड़ा और अब अपराध की भावना करके भागा है कि मां मारेगी। तो देखने लगे, हाथ में एक रस छड़ी ले ली, सोचा कि अब तो ये बिल्कुल बिगड़ कर माटी हो जाएगा, इसको दंड देना चाहिए। इतना बदमाश लड़का, आज मटका फोड़ रहा है, कल घर में आग लगा सकता है, कुछ कर सकता है, इसलिए इसको कुछ दंड देना चाहिए। तो हाथ में छड़ी लेकर के और पैर के नूपुर को बांध करके धीरे धीरे जाने लगी। और श्री कृष्ण क्या किए, और भी अपना क्रोध और शोक प्रकट कर रहे थे, एक उखल को उल्टा करके और छींके पर से माखन के मटके को निकाल करके बासी माखन खा रहे थे, खा रहे थे, कुछ बांडरों को दे रहे थे, और चोर की तरह देख रहे थे कि मां आ रही है, आ रही है। तो मां जसोदा ने देखा कि यह बासी माखन खा रहा है, बांडरों को दे रहा है। बासी माखन खाने का आशय क्या था, कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि मुझे इतनी भूख है, मैं क्या करूं, मैं बासी माखन खाऊंगा और मैं बीमार पड़ूंगा तो तुम्हारा कितना रुपया दवाई करने में लगेगा, ये दिखा रहे थे। मैं क्या करूं, भूख इतनी है कि मैं बासी माखन खा रहा हूं, बीमार पड़ूंगा तो मुझे ले जाना मथुरा हॉस्पिटल में, तब तुम्हारा कितना पैसा है, ये दिखा रहे। और क्रोध में वानरों को भी दे रहे थे, वानर आ ही जाते हैं खाने के, तो उनको दे रहे थे माखन ताज। माँ ने देखा और देख रहा था, जब उन्होंने देखा कि माँ हाथ में छड़ी लिए आ रही है तब तो एकदम विश्वास हो गया कि अब तो पीटेगी, तो उखल से कूद करके मटका को भी फेंक करके और चले भाग। इस समय तो कम से कम स्पॉट पर नहीं पकड़ा जाना चाहिए, बाद में पकड़े जाएंगे देखा। तो भागने लगे, भागे अपने घर में ही, भीतर इधर उधर माँ यशोदा पीछा करने लगी, फिर घर से बाहर गली में भागे, इस घर में उस घर में इधर गली में उधर में। माँ यशोदा ने सोचा इसको पकड़ करके ही रहूंगी, भारी शरीर था माँ यशोदा का, कृष्ण तो छोटी कार के समान थे, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे थे, लेकिन फिर भी माँ ने सोच लिया कि आज पकड़ करके ही रहूंगी। तो कृष्ण का दुख और बढ़ता जा रहा था कि अगर देर के बाद पकड़ा जाऊंगा तो और मारेगी, इतना हैरान करके मिला। लेकिन श्री कृष्ण भाग रहे थे, भागते भागते हांफ रहे थे इस घर से उस घर में, इस घर से उस हांफ रहे थे, माँ को भी हांफी आ गई, श्वास चल गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माँ के केश के फूल गिर रहे हैं, बाल बिखर गया है और पसीना आ गया है, दौड़ करके आ रहे हैं। तब भगवान के हृदय में दया आ गई, ओहो मेरी माँ मेरे हित के लिए मुझे दंड देना चाहती, मुझे इसके बस में हो जाना चाहिए। तो भगवान ने थोड़ा सा अपनी गति को, स्पीड को शिथिल किया और माँ यशोदा जा करके अपने बाएं हाथ से ऐसे पकड़ ली, आगे से पीछे से नहीं पकड़ी, झटका लग जाएगा उसको दुख होगा, आगे हाथ करके पकड़ ली और पूछने लगे क्यों मंत्री स्फोटक, तुमने मटका क्यों फोड़ा, तुम्हारी प्रकृति वानर जैसी है, चंचल हो, तुम्हें मैं अब कुछ भी खाने को नहीं दूंगी, तुमने क्यों मटका फोड़ा, क्यों मटका फोड़ा। तो श्री कृष्ण तो रो रहे थे। तो माँ ने देखा कि छड़ी ली हूं इसलिए बहुत डर गया है, तो छड़ी को फेंक दी, लेकिन कहा कि तुमको मैं पशु की तरह बांध करके रखूंगी, इतना स्वतंत्र हो गए हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तुमको मैं बांध कर रखूं, बकरी की तरह बांध करके छोड़ दू। तो जिन ही रस्सी उठाया ये कह करके मैं तुम्हें बांधूंगी और दिन भर कहीं नहीं जाने दूंगी, खेलने नहीं दूंगी, भोजन नहीं दूंगी और तब तुम देखो क्या होगा। तो गोपी आ ददे, यहां से कुंती महारानी करते हैं, गोप्या ददे गोपी जावत आ ददे, जब रस्सी ली उसी समय श्री कृष्ण के आंखों से झरझर आंसू आने लगे, फफक फफक करके रोने लगे, कहे मैया मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, ऐसे कभी अपराध नहीं करूंगा। और उस दिन दीपावली के अवसर पर पृथा महारानी कुंती गई थी घर पर, यशोदा जी के घर पर गई थी और अपनी आंख से इस लीला को देखा था कुंती ने, उसी को कह रही गोप्या ददे तई कृतागसी, जब आप आगस किए थे, अपराध किए थे, मटका फोड़ दिए थे और इस अपराध के कारण जब आपकी मां यशोदा रस्सी उठाई उस समय आपकी क्या दशा हुई, आपका मुख कैसा हो गया, गोप्या ददे तई कृतागसिदा तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आपका मुख कैसा हो गया, झरझर आंसू चुने लगे आपके मुख से, आपकी आंख से, और आंख का काजल घुल घुल करके आपके गाल पर आने लगा, आप एक हाथ से मल रहे थे, एक हाथ को तो यशोदा जी ने पकड़ा था और एक हाथ से कृष्ण रो रहे थे और भगवान ये सोच रहे थे कि हाय रे अब ऐसी विपत्ति कब आए, कैसी मैं पार करूंगा, मां पालने वाली है, मां पोषने वाली है और आज मां ही मेरा शत्रु बन गई, मुझे मार रही है, मुझे मारेगी पीटेगी। कुंती महारानी कहते उस समय आपकी आंखों से अजस्र आंसू चू रहे थे और आंसू से अंजन कलिल हो रहा था और आपकी आंखें बिल्कुल भय से व्याकुल हो गई थी, उस समय आप मार पर ऊपर देखने का भी साहस नहीं कर रहे थे, वक्त्रम निमीय वक्त्र मुख को नीचे कर लिए और कलिलांजन संभ्रमाक्ष में मुख का विशेषण है, मुख आपका इस तरह से हो गया, एक हाथ से आंसू पोछ रहे थे, फफक फफक कर रो रहे थे और मुंह को नीचे किए थे। आपकी उस दशा का जब मैं स्मरण करती हूं, सात दशा, तो वो दशा मुझे विमोह में डाल देती है, कहां जगत का ईश्वर काल भी जिससे डरता है, जमराज रुद्र आदि जिसके अनुशासन में है, सारे जगत को जो कर्म के बंधन में बांध करके रखा है जो परम ईश्वर, और वह ईश्वर मां यशोदा से इस तरह से डरा हुआ। कुंती महारानी विचार कर रही हैं, कह रहे साहब कि आप निश्चित डरे हुए थे। ये प्रश्न होता है, हम लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण का भय वास्तविक था या केवल नकल था? नहीं, नकल नहीं था। महारानी कुंती यही कह रही है, भय भावनेय स्थितस्य, आप भय की भावना से उस समझते थे, आपकी दशा अद्भुत हो गई थी, इस तरह से रो रहे थे कि आप जैसा असहाय और अपराधी व्यक्ति कोई नहीं है। भगवान जीवन में पहली बार अपराधी के रूप में खड़े हैं, जो सबको दंड देते हैं अपराधियों का, जो अपराधी के रूप में खड़े हैं, मां यशोदा धमकी दे रही है, तो भगवान की ये दशा हुई। वो दशा मां विमोह यति, मुझको विशेष मोह में डाल रही है। यह मोह का अर्थ विस्मय, विस्मय में डाल रही। सारे जगत के ईश्वर, सारे जगत के नियमता, काल भी जिनकी आज्ञा में रहता है, काल भी भयभीत होता है, वो प्रभु अपने मां के भय से इस तरह से क्या कर रहे थे। महारानी कुंती ने जिस लीला को आंखों से देखा है, वो भगवान श्री कृष्ण की वो उखल बंधन लीला इनके मानस पटल में आज भी उभर रहा है। भगवान रथ पर बैठे हैं, विश्व युद्ध का संचालन किए, इनके पुत्रों को विजयी बनाए, ब्रह्मास्त्र का समन किए, परीक्षित की रक्षा किए उत्तरा के गर्भ में, ऐसे परम ईश्वर, और एक दिन वैसे असहाय दशा में रो रहे थे। जब मैं उस दशा पर विचार करती हूं, याते दशाश्र कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निमीय भय भावने अस्थित, भय की भावना पी थी कि मां मुझे पीटेगी, मां मुझे मारेगी, और आप ऐसी दशा में थे कि मां को दया आ जाए, आपकी वह दशा मुझे बहुत विस्मय में डाल रही है, आश्चर्य में डाल रही है, मैं आपके लीला के मर्म को समझ नहीं पा रही हूं। एक बार विश्व युद्ध में विजेता बना रहे हैं पांडवों को, ब्रह्मास्त्र का समन कर रहे हैं, और एक बार एक गोपी के छड़ी दिखाने से बिल्कुल रोने लगे इस तरह से। अच्छा, इसलिए विस्मय में पड़ रही हैं कुंती महारानी, भगवान के ऐश्वर्य का ही वर्णन कर रही हैं कि आप ईश्वर हैं, जानती हैं कि ईश्वर हैं, इसीलिए आश्चर्य हो रहा है कि वो दशा क्या हुई थी। ईश्वर की, सर्व जगत के कंट्रोलर की वो दशा हो गई थी, तो वो दशा हमको विमोह में डाल रही है, हमको महान आश्चर्य में डाल रही है, मैं आपके लीला के मर्म को नहीं समझ पा रही हूं। ये बात जरूर है कि आपकी लीला परम आकर्षक है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ साथ विस्मय में डाल रही है कि भगवान की यह दशा कि एक गोपी के भय से इस तरह से रोवे, यह है भगवान की लीला का माधुर्य। वास्तव में विविध लीला श्री कृष्ण करते हैं, कहीं ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, कहीं अपने वात्सल्य रस के आस्वादक भाव को प्रकट करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवान रहते रहते कभी कभी उब जाते हैं, सबको कंट्रोल करना, सबको नरक स्वर्ग में पटकना, ये करना है, वो करना है, वो करना। भगवान की ये इच्छा थी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे दंड देगा और मुझको धमकी देगा, कोई ऐसा है क्या? भगवान की लालसा थी, चूंकि वे रसिक से करें तो वो चाहते थे कि हमको कोई कंट्रोल करे। ओम जय जगदीश सुनते सुनते तो भगवान उब गए। जगदीश तो है ही, लेकिन भगवान सोचते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो मुझे डांटता। उस साध को भगवान ने पूरा किया मां यशोदा के द्वारा, भगवान को दंड देने के लिए। यशोदा क्यों माटी खाया, माटी उगलो, दूर खेलने मत जाना, वहां हाउ आए हैं। नंदगांव में मां यशोदा ने बड़े बड़े दांत वाला, बड़ा मुंह वाला पत्थर का शेर बना करके रख दिया। द्रौपदी हाउ आया, दूर खेलने मत जाना, वहां हाउ आए हैं। तो कहते भगवान पूछते मैया हाउ क्या होता है? अरे वो हाउ बाघ जैसा एक जीव होता है, बच्चों को देखते ही खा जाता है, इसलिए दूर मत जाना खेलने। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैया जब मैं नृसिंह अवतार लिया था तो उस समय हाउ नहीं देखा कैसे। मां यशोदा को कहा चुप रह, नृसिंह अवतार लिया था, बिल्ली जब म्याऊं म्याऊं बोलती है तो मेरी गोद में छिप जाता है, ये नृसिंह बना क्या पागल। बिल्ली घर में खाट के नीचे म्याऊं म्याऊं बोलती थी तो कृष्ण तुरंत दबक करके रक्षा करो रक्षा करो मां, कि कौन सा जानवर आ गया। जो बिल्ली के भय से मां यशोदा के आंचल में छिप सकता है वो कह रहा है कि मैं नृसिंह बना था, हिरण कशपु का वध किया था, फिर भी हाउ नहीं देखा। ये हाउ क्या होता है? और जब मैं बामन बना था, बलि से दान लिया, दो पग में सारा विश्व नापा, तीन पग में, उसमें भी हाउ नहीं देखा। ये हाउ क्या होता है? मां यशोदा तो सुन सुन करके यही समझती थी कोई इसको भूत लग गया है, अपने को भगवान कह रहा है। और श्रीकृष्ण ऐसे रह रहा करके बोलते थे क्योंकि भगवान का स्वरूप है, स्वरूप थोड़े जा सकता है, तो भले बाल लीला कुछ भी करें लेकिन है तो ईश्वर ना। कह रहे जब मैं राम अवतार लिया था, समुद्र पर बहुत भारी सेतु बनाया, बानरों की सेना इकट्ठी किया, जंगल में 14 वर्ष रहा, लेकिन हाउ नहीं देखा। कैसा होता है? मां यशोदा इन सब बातों से बहुत घबराती थी, ये अपने को भगवान कह रहा है, भगवान रामचंद्र कह रहा है, वामन देव कह रहा है, मत्स्यावतार या बड़ा बड़ा अवतार सब कहते रहते थे क्योंकि है ही वास्तव में। लेकिन मां इसको अच्छा नहीं मानती थी, तो कभी कभी किसी गांव के मंत्र तंत्र जानने वाले से कृष्ण को ले जाकर झरवाती थी कि हमें लड़के को क्या हो गया है, क्या बकता रहता है। एक दिन कृष्ण मां यशोदा के गोद में सोए थे तो वे सपना देख रहे थे, भगवान सपना देख रहे थे, मैं राम हूं और सीता का हरण हो रहा है, लंका के मैदान में रावण खड़ा है, तो सपना देख रहे थे। तो सपना में बोल दिए, लक्ष्मण मेरे धनुष लाओ, धनुष लाओ, मैं इस राक्षस का भी वध कर देता हूं। मां तो करती है, यशोदा क्या हो गए? और उस रात के समय वो व्याकुल हो गए कि हाय रे भगवान, हमारे बच्चे को क्या हो रहा है, धनुष लाओ धनुष लाओ, मैं अभी रावण का वध कर देता। समझाती है, कई बार ऐसी लीला करते रहते। श्री बलराम जी कंट्रोल करते हैं भगवान को, नंद बाबा करते हैं और यशोदा करते हैं कंट्रोल। इस सुख का, इस रस का भगवान आस्वादन करते हैं। किसी भक्त के हृदय में वात्सल्य भाव है, उस वो वात्सल्य रति जो है वही एक दिन वात्सल्य रस का रूप धारण करती है, तो उस रस का आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। ऐसे भगवान को जगदीश्वर कहने वाले, प्रणाम करने वाले, आरती करने वाले, कई तरह से सेवा करने वाले तो बहुत भक्त हैं, लेकिन भगवान को बस में रखने वाले, उनको डांट करके उनको रूटीन के अनुसार चलाने वाले बहुत कम लोग हैं। यहां मत जाओ, ये मत खाओ, मिट्टी मत खाओ, ये मत खाओ, दूसरे के घर में चोरी मत करो, देखो गांव के लोग हल्ला कर रहे हैं कि तुम चोर हो तो आगे चलकर तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा, चोरी छोड़ दो नहीं तो विवाह नहीं होगा, लोग जान जाएंगे चोर है और रंग भी काला है तो कौन विवाह करेगा, स्वभाव भी खराब है और रूप रंग तो खराब है। इसलिए उज्जवल नीलमणि है भगवान, वास्तव में कोटि कोटि गौरव से वो परम सुंदर है, उनकी तो सुंदरता का कोई था ही नहीं है, लेकिन फिर भी रंग सांवला था। तो कभी कभी कहती थी मां यशोदा, इस तरह से मां यशोदा कंट्रोल करती थी। तो आज के दिन भगवान चाहते थे कि हमारा भक्त हमारे प्रति स्नेह से हमको बांधे, हमको डांटे, तो भगवान की वह रस पिपासा पूरी हुई मां यशोदा के द्वारा। कितना भी रोते रहे, कुछ भी रोते रहे, उखल में बांध ही दिया। ऐश्वर्य भी प्रकट कर रहे थे, दो अंगुल रस्सी घट गई थी, कितनी भी रस्सी जोड़ती थी यहां आकर दो अंगुल कम पड़ जाते, ऐश्वर्य प्रकट कर रहे थे, लेकिन अंत में मां यशोदा ने बांध ही दिया और बांध करके कहा कोई भी इसे नहीं खोलेगा, इसकी सारी शैतानी मैं निकाल दूंगी, कोई नहीं खोलेगा। नंद बाबा तो थे ही नहीं, वो खेत पर काम करने गए थे। कुछ बच्चों ने बलराम जी को जाकर के कहा, बलराम बलराम तुम्हारा भाई बकरी की तरह बांधा गया है। बलराम जो बांधा गया है, बांधा गया है तो ये भी नहीं सुने कि कौन बांधा है, वो कहते हैं कौन बांधा है, कौन बांधा है, वो कहते हुए आए, कौन बांधा है कृष्ण को, कौन बांधा है, कौन बांधा है। तो मां यशोदा सामने आई, तो मैंने बांधा है, तुम क्या कहते हो, मैं बांधी, तुम जानते हो कृष्ण कौन है, तुमको पता है कृष्ण कौन है। मां यशोदा कहती कौन है, ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है, इसी ने नृसिंह अवतार लिया था, इसी ने राम का रूप धारण किया था, यही बराह बना था, यही परशुराम बना था, ये बना था, वो बना था, जितने अवतार हुए हैं सब इसने ग्रहण किया, तुम जानते नहीं हो कृष्ण को और तुम बांध रही हो, इतना अपराध कर रही हो, अपराध मत करो, चलो खोलो, चलो खोलो। तो मां यशोदा कहती है हाँ सब अवतार तो ये लिया है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं शेषनाग हूं, शंकरसन हूं, मेरे एक फूंक से सारा विश्व जल कर राख हो जाता है, तुम नहीं पहचानती हो, अभी आग लगा दूंगा इस ब्रज में, खोलती हो कि नहीं, भगवान को बांध करके रखी। मां यशोदा छड़ी दिखाकर बलराम जी को कहती है मेरा घर ही सभी अवतार लेने के लिए है, दूसरे का घर नहीं है, सारा अवतार ये अवतार ये अवतार, अभी मैं तुमको पीटूंगी, जैसे इसको बांधी हूं ना तुमको भी बांध दूंगी, तुम हटते हो कि नहीं। वो बलराम जी भाग गए, शंकरसन बन रहे थे, तब प्रलय कर रहे थे, अब मां से भाग गए, और इधर आना नहीं है, बलराम कुमार ने कहा कि इधर आया तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी, कभी मत आना। बलराम जी भाग गए, कुछ दूर रुके रहे, मां अपने घर के काम में फिर हुआ, और कृष्ण ऐसे ही रो रहे थे बंद कर। तो श्री बलराम जी बाद में गए कृष्ण के पास, कहे अब क्या उनका फेस बदल गया, कहते मैं तुमको कई बार समझाया कि चोरी मत करो, कई बार कहा मटका मत फोड़ो, तुम तो बात पर ध्यान देते नहीं हो, अब अपने कर्म का फल भोगो, हम क्या करें, हम क्या करें। और फिर कहते हैं कोई दूसरा बांधा होता तो मैं खोल देता, लेकिन मां बांधी है, मेरी हिम्मत नहीं है। अब श्री कृष्ण ये सुनकर के और रोने लगे, एक भाई का सहारा था वो भी जवाब दे, वो खोल सकता था लेकिन नहीं खोला, और रोने लगे। फिर श्री बलराम जी कृष्ण को समझाने लगे कोई बात नहीं है, फिर खोलेगी वही खोलेगी, हम नहीं खोल सकते, तो भी कृष्ण के बगल में रोने लगे। सूरदास जी ने लिखा है अपने पद में और कहते हैं कि मेरे जीवन भर कृष्ण बलराम की रोती हुई छवि हृदय में बसी रहे। दोनों भाई रो रहे हैं, विपत्ति में हैं, एक भाई बांध दिया गया है और दूसरा उसके स्नेह में उसकी संवेदना में उसके साथ रो रहा है। ये भगवान की दशा है ब्रज में। दोनों भगवान इतने लाचार हो गए। यह है भगवान की लीला, और वो अपने सुख के लिए करते हैं और भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं। श्रीमती कुंती महारानी भगवान की इन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, इसमें यह लीला गुप्या ददे त्रय कृता गसिदा मतावद याते दशाश्र कलिलांजल संभ्रमाक्षम वक्त्रम निमीय भय भावने आश्रितस्य श्यामां विमोहयति भीरपिजत विभेद भी अपी जब विभेदी साक्षात काल भी जिसे डरता है वो आप अपने मां के डर भय से डरे हुए थे, निश्चित डरे थे, नाटक नहीं था, वास्तव में भगवान भयभीत थे, पर ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान भयभीत थे तो उस समय भगवान नहीं है, वो भगवत्ता में रहते हुए ही इस माधुर्य की लीला को कर रहे थे। इसलिए कुंती महारानी आगे कहती हैं कि जगन मोहन तया दुर्गत्वात् तव जन्मादि बहुधा वर्णयन्ति, जगत को मोह में डालने वाला, विस्मय में डालने वाली आपकी लीलाएं हैं, आपका जन्म, आपका कर्म, इसीलिए विद्वान लोग अनेक प्रकार से आपके जन्म का वर्णन करते हैं और कर्म का वर्णन करते हैं। आप क्यों जन्म लेते हैं इस जगत में, इसको अनेक प्रकार से कहते हैं, तो उसको भी आगे कहते हैं। इसके बाद कौन श्लोक है? एक आदमी बोलिए, के चिदाहु रजम जातम पुण्य श्लोक सीखते जदो प्रियस्वानुआय मलस्य वचंदनम। कई लोग कई प्रकार से भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वर्णन करते हैं, अवतार का, तो कहते केचित आहु, कुछ लोग कहते हैं, कुछ ऋषि मुनि विद्वान भक्तजन कहते हैं कि अजम जातम, अजन्मा ने जन्म लिया है, वे कहते हैं जिसका कोई जन्म नहीं है वो जन्म लिया है, मतलब प्राकृतिक जन्म नहीं है, दिव्य जन्म लिया है। केचित आहु अजम जातम, कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा ने जन्म लिया है, आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो जन्म मरण से शून्य है, जन्म से रहित है, उस प्रभु ने जन्म लिया। केचित आहु अजम जातम, अजम जन्म रहित, अजन्मा ने जातम जन्म लिया है। केचिदाहु रजम जातम, किस लिए? पुण्य श्लोकस्य कीर्त है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि पुण्य श्लोक महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए अजन्मा ने जन्म लिया है। युधिष्ठिर महाराज वहीं पर खड़े हैं, महारानी कुंती कहती है कि युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए अजन्मा ने जन्म लिया है, पर ब्रह्म प्रकट हुए कहां? जदुवंश में। जदो प्रिय सन्वाय, अपने प्रिय जदु के अन्वय में, वंश में अजन्मा ने जन्म लिया है। केचित आहु, केचित का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? केचित का अर्थ बड़े बड़े विद्वान सूर्य जैसे भगवान वेदव्यास देव या असित देवल ये सब कहते हैं, नारद जी कहते हैं ये साक्षात अजन्मा भगवान है, ये महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लिए, अथवा अपने प्रिय जदु महाराज के वंश में जदु महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लिए। मलय शिव चंदनम, जैसे मलय पर्वत पर चंदन जन्म लेता है तो मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ती है, कीर्ति बढ़ाने के लिए जहां भी चंदन जाता है तो लोग पूछते हैं कहां का चंदन है, तो मलय चंदन, तो चंदन के साथ मलय पर्वत की कीर्ति फैलती है, मलय चंदन का। तो जैसे मलय पर्वत पर चंदन उगता है तो वो मलय पर्वत की कीर्ति का विस्तार होता है, इसी तरह से जदुवंश में अपने प्रिय जदु महाराज के वंश में अजन्मा ने जन्म लिया है जदु की कीर्ति बढ़ाने के लिए। अच्छा, पुण्य श्लोक का अर्थ है पुण्य श्लोक को नलो राजा, पुण्य श्लोक को युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज के लिए पुण्य श्लोक शब्द है बहुत प्रचलित है। महाराज युधिष्ठिर का जस ऐसा है कि उसको कहने सुनने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है, महान कीर्ति है उनकी, भगवान की कीर्ति के समान। तो युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को भगवान बढ़ाए वास्तव में, इसीलिए कुछ महापुरुष कहते हैं कि युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए अपने प्रिय भक्त जदु महाराज के वंश में भगवान जन्म लिए, या जदो प्रियस्य पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। जदु महाराज भगवान के बहुत प्रिय हैं तो अपने प्रिय के वंश में भगवान ने जन्म लिया, जदुवंश में जदु महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए। कीर्तये ये जदु महाराज के लिए और युधिष्ठिर महाराज के लिए, दोनों के लिए, एक वंश में भगवान ने जन्म लिया उससे उस वंश का नाम आगे हुआ और भगवान ने सख्य किया, संबंध किया महाराज युधिष्ठिर से, पांडवों से, तो उनकी कीर्ति का विस्तार किया, उनके सामने सारे जगत को झुका दिया। तो अजन्मा ने जन्म लिया तो उसके जन्म का कारण बताते हैं युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार और अपने प्रिय जदु महाराज की कीर्ति का विस्तार, जदु वंश में जन्म लिया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। महारानी कुंती बड़े बड़े महान पुरुषों के सुने हुए उद्गार को कह रहे हैं। महारानी कुंती ऐसे परिवार में थी, ब्याही गई थी, जिस परिवार में उनके पुत्र के रूप में पांच पांडवों का जन्म हुआ, और इतना इतना विशिष्ट परिवार है कि संसार के सारे ऋषि मुनि हस्तिनापुर में आया करते थे, यह जान करके कि साक्षात परब्रह्म भगवान यहां इनके ममेरे भाई के रूप में हैं। भगवान रहते थे हस्तिनापुर में। जूयम निर्लोके बतभूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति जेषां गृहाना वसति ते साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। नारद जी कहते हैं राजसूय सभा में कि महाराज युधिष्ठिर, इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली आप लोग हैं जिनके घर में साक्षात परब्रह्म छिप करके मनुष्य के रूप में रह रहा है। ओहो, आप लोग धन्य हैं। जूयम निर्लोके बत भूरि भागा जैसा गृहा न वसती तैसा लोकम पुनाना मुनयो भयंती, समस्त विश्व को पवित्र करने में समर्थ मुनि लोग आपके घर में आते रहते हैं। किस लिए आते हैं? जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर भगवान इस घर में रह रहे हैं, इसीलिए सब आते रहते हैं। मुनियों का तांता लगा ही रहता था हस्तिनापुर, जान गए थे भगवान यही रह रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे। तो इस पृथ्वी पर पांडव अतिशय भाग्यशाली हैं जिनके घर में भगवान आते रहते हैं। कुंती महारानी बड़े बड़े मुनियों से सुनी हैं, राजसूय सभा में सुनी हैं, नारद जी से, बड़े बड़े ऋषि आकर के प्रवचन करते थे और प्रवचन करते थे, कृष्ण की कीर्ति को गाते थे, बोलते थे, बताते थे, कृष्ण का डायरेक्ट वर्णन। राजसूय सभा में भगवान श्री सिंहासन पर बैठे हैं और ऋषि लोग उनके बारे में डायरेक्ट बता रहे हैं, ये साक्षात परब्रह्म है, भगवान है। इस तरह के लोगों के मुख से कुंती को सुनने को मिलता था, भगवान बैठे हैं सामने और ऋषि लोग वर्णन कर रहे हैं। आजकल जैसे नहीं होते थे ऋषि मुनि के आकर के कहीं कव्वाली और गजल गा करके पार कर दिया प्रवचन हो गया, ऐसा प्रवचन नहीं होता था, भगवान का डायरेक्ट वर्णन हो रहा था। नारद जी सातवां स्कंध तो नारद जी ही कहे हैं, भागवत में ऐसा लिखा गया। तो कुंती इन महान पुरुषों से सुने थे, इसे यह भी सिद्ध है कि किसी को भी सुनना चाहिए, स्त्रियों को भी सुनने का अधिकार था पूरा भगवान की कथाएं हस्तिनापुर में, और इसीलिए भगवान के बारे में बहुत अच्छा बोल पाती थी, जैसे कुंती महारानी बोल रही है या हस्तिनापुर की अन्य नारियां बोली हैं भगवान के विषय में। ये दसवें अध्याय में ये बात कही गई है, हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन की है परस्पर। यह सुनी है इसीलिए कहते हैं कि केचित आहु, कुछ लोग कहते हैं तो सुनी है ना और पढ़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा ने जन्म लिया है युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति प्रसार के लिए अपने प्रिय जदु के वंश में। अपरे आहु, आहु वहां से लेंगे, आहु माने कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं अपरे वसुदेवस्य देवक्या में आचितो व्यगात अजस तमस क्षेमाय बधाय च सुरद्विषा। और कुछ महान पुरुष ऐसा कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने आपसे पुत्रत्व के लिए प्रार्थना किया था। वसुदेव जी सुतपा के रूप में थे प्रजापति और देवकी प्रिश्नी थी, इन दोनों ने बहुत बड़ा तप किया था, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आप प्रकट हुए और कहे कि वर मांगो, तो सुतपा और प्रिश्नी ने यही वर मांगा कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। तो अपनी बात को सत्य करने के लिए उनके प्रेम से प्रभावित होकर आप उनके पुत्र बने। कुछ महानुभाव ऐसा कहते हैं कि सुतपा और प्रिश्नी की प्रार्थना से जो बाद में वसुदेव और देवकी हुए, अर्थात वसुदेव और देवकी की प्रार्थना से आप देवकी के गर्भ से जन्म लिए हैं और वसुदेव जी को अपने पिता के रूप में स्वीकार किए, इनके प्रेम से आपने जन्म लिया है। अजस तुमस क्षेमाय बधाय च सुरदृशां, इसके साथ ही साथ जन्म तो लिए वसुदेव देवकी की इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन जन्म लेकर और काम किया आपने, और काम करने के लिए भी अवतार लिए। आप तो अज हैं, आप जन्म रहित हैं, अजन्मा हैं, और सक्षेम आया इस संपूर्ण विश्व के जीवों का हित करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए आप अवतार लिए हैं। और बधाए चो सूरत दूसर, और देवताओं के जो द्रोही हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, उनका वध करने के लिए आप अवतार लिए। अवतार लिए वसुदेव जी की भार्या देवकी के गर्भ से, और आपका प्रयोजन है देवकी वसुदेव को सुख देना, ये तो है ही, परंतु अस्य क्षेम आय, इस संपूर्ण विश्व के प्राणियों के मंगल के लिए आप अवतार लिए, क्षेम के लिए, हित के लिए। देखिए भगवान का इस जगत में अवतार सभी प्राणियों के सुख के लिए होता है, तो सभी प्राणियों को सुख देने के लिए आतंकवादियों को मारना जरूरी है। बधाए सूरत विषय, तो आज के युग में कह सकते हैं जो असुर है वो आज के युग में आतंकवादी बने हुए हैं, बस उनको मारना है, यही समझ में आता है, मारो, ये करो, डिस्टर्ब करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसीलिए भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनके अनेक मिशन होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रधान मिशन होता है इनको मारना, असुरों को मारना। वो 6 दिन के थे तभी पुतना को मारे, और 6 दिन के थे तब से मारना चालू किए और पूरे जीवन भर मारते रहे। अंतिम युद्ध था कुरुक्षेत्र का युद्ध, इसमें भगवान स्वयं तो नहीं मारे, लेकिन भीम और अर्जुन में शक्ति दे करके सबको खत्म करा, इस तरह से उन्होंने किया। भगवान कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, अनंत बल के स्रोत है। ऐसा नहीं है कि भगवान इस जगत में आवे धर्म का प्रचार करने के लिए और उनको ही सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसको भगवान नहीं कहते हैं। भगवान अनंत बल से युक्त होता है। श्री कृष्ण यहां है तो जिसको मारना चाहे मारते, क्षण भर में देखते देखते धर्म की स्थापना की। बधाय च सूरत विषम, भगवान का एक काम है दुष्ट लोगों का वध करना, यदि उनका वध करके अपने धाम में भेज देते हैं तो यहां डिस्टर्ब मत करो, जाओ हमारे धाम में नित्य जीवन जियो। भगवान उन पर भी कृपा ही करते हैं, लेकिन ऐसे यहां की स्थिति ठीक करने के लिए आते हैं। अजस तमस्य क्षेम आय बधाय च सूरत विषम, इस जगत के अर्थात जगत में रहने वाले समस्त जीवों के क्षेम के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके मंगल के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वो सुख से जिए, खाए, पिए, इस लोक में भी सुखी रहे और परलोक में उनकी गति हो, वो भगवान के धाम में जाए, इसके लिए वे आते हैं। क्षेम कई तरह से करते हैं, रक्षा करते हैं, अपनी लीला प्रकाशित करके श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करते हैं, कई तरह से कई भक्तों की डायरेक्ट भगवान ने ऐसे रक्षा किया, बचाया, रसलों का वध किया। बधाए तो सूरत दिशा भारावतारणाय अन्य भू नाव इवो दधो सिदंत्या भूरि भारेण जातो यात्म भूआर्थित। और कारण बता रही कुंती महारानी कि यह पृथ्वी असुरों के भारी भार से उस तरह से दुखी हो रही थी जैसे किसी नौका पर बहुत वजन लाद दिया जाए, भूरी भार लाद दिया जाए और नौका अब डूबे तब डूबे की हालत में हो, इस तरह से पापियों के, दुष्टों के, दुष्कर्म के भार से पृथ्वी अब दशातक जाने वाली थी, जो सहन नहीं हो रहा था। तो अन्य लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो कहता है वो दूसरा मत नहीं कहता है, सभी कहते हैं, कहने का आशय है, जितने ऋषि मुनि हैं बताते हैं यह कारण है। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अनेक कार्य संपादित करना होता है, अब देखते हैं एक साधारण आदमी जब जाता है बाजार करने तो लिख लेता है ये खरीदना है ये खरीदना है ये खरीदना है, बस इतना ही बड़ा मिशन है, जाकर के शॉपिंग करके आ जाए। लेकिन जब भगवान आते हैं वैकुंठ से तब कॉल कॉल व्हाट टू डू टूडे वो सब लिखते हैं, लिखना नहीं पड़ता, ये काम करना है ये काम करना है ये काम करना है, सारे जीवों को सुखी करना है, सज्जनों की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, और जितने भी आतंकवादी हैं दुष्ट हैं उनको कत्ल करना है, ये भगवान काम करते हैं, या करके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रवचन करें, धर्म का प्रचार करो, ऐसा करो ऐसा करो और उन्हीं को कोई लेकर के फांसी पर चढ़ाए, तब तो भगवान आएगा नहीं डर करके, अगर ऐसा कोई करे तो श्री कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है, श्री कृष्ण रियल ईश्वर है, भगवान है, और बाकी सब वास्तव में ऐसे ही कह देते हैं लोग, ये भगवान ये भगवान ये भगवान, कोई भगवान नहीं है, भगवान है श्री कृष्ण। ये सब प्रकार से कुंती महारानी अनेक महान पुरुषों के उद्गार को व्यक्त कर रही है। भूरी भार से पृथ्वी आक्रांत थी, यह पृथ्वी बहुत दुखी थी, यह ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को आत्मभू कहते हैं, स्वयं भू, आत्मा से भगवान से जिसका जन्म हुआ है उसको आत्मभू या स्वयं भू। भगवान का नाम आप पढ़िए विष्णु सहस्र नाम में तो उसमें स्वयं भू स्वयं नाम लिखा गया, स्वयं भगवान का एक नाम ही स्वयं, चूंकि स्वयं है, उनको कोई पैदा नहीं किया, उनकी सत्ता दूसरे की सत्ता पर आधारित नहीं है, वे सर्वतंत्र स्वतंत्र सब तरह से परिपूर्ण है, इसीलिए उनको स्वयं कहते हैं, और स्वयं से जिसका जन्म हुआ है ब्रह्मा जी उनको स्वयं भू कहते हैं, तो यहां पर आत्मभू कहा गया, आत्मभूआ अर्थित है, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की आपसे अवतार लेने के लिए तब आप अवतार लिए पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। भगवान श्रीकृष्ण के अवतार के लिए इस विश्व के सबसे बड़े देवता ब्रह्मा जी प्रार्थना किए तब भगवान आए हुए हैं। तो आजकल कोई अपने को भगवान कहता है तो उसे पूछिए कि तुमको यहां बुलाने के लिए कौन प्रार्थना किया है, तुम्हारे जैसे खल को अज्ञानी को कौन बुलाया, कौन प्रार्थना किया था, जन्म लेकर के पृथ्वी का भार बढ़ा रहे हो ऐसे ऐसे भगवान आए, कौन बुलाया तुमको, कौन पता है कि इस जन्म के पहले तुम थे कौन, कहां थे, कौन मां थी कौन पिता था, हो सकता है कि इसके पहले जन्म में सियारिन मां रही होगी और सियार पिता होगा, कुछ पता नहीं, रिहाया करके थोड़ा सा पढ़ लिख करके चेला बना करके घोषित करते हैं भगवान, और जमराज जी तुरंत बताएंगे कि भगवान भगवत्ता तुम्हारी कहां गई, इसके बाद नरक में पटकेंगे, जब दूतों के द्वारा पिटाई होगी तब पता चलेगा कि हमने बहुत भारी गलती की है, भगवान हो गए, असली भगवान का वर्णन कुंती महारानी कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेक ऋषियों के महान पुरुषों के मत को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद और मत कहती है, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन्ति केचन आहु, और कुछ लोग कहते हैं कुछ और तरह से वर्णन करते हैं, आप क्यों आते हैं इस जगत में, आपके आने का मुख्य कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है, तो वे कहते हैं अस्मिन् भवे इस संसार में क्लिश्यमानानाम् जीव दुखी है, भगवान अपने धाम से देखते हैं कि इस जगत में जहां जन्म पर जन्म लेना पड़ता है मरण होता है जीव बहुत दुखी है, क्यों दुखी है, अविद्या काम कर्म भी, दुख का कारण क्या है, एक तो अविद्या अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन जीवों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है जिस वृत्ति से उसको अविद्या कहते हैं, मैं वास्तव में भगवान कृष्ण का अंश हूं और चिन्मय हूं नित्य हूं उनका दास हूं, यह ज्ञान मायाबद्ध जीवों को नहीं रहता, अनादि काल से ही उनको ज्ञान नहीं है श्री कृष्ण का, इसको अविद्या कहते हैं, अपने परमानंद स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, स्वरूप मतलब भगवान श्री कृष्ण परमानंदमय है, मैं उनका अंश हूं उनके साथ रह करके मैं सुखी हो सकता हूं, इसको कहते हैं स्वरूप, तो स्वरूपा ज्ञानम परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि अपने परम आनंदमय स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, इसको अविद्या कहते हैं। और अविद्या का दूसरा फेज क्या है कि जो हम नहीं हैं, इस जड़ शरीर में माया अहम बुद्धि पैदा करते हैं कि मैं यह देह हूं, मैं जो हूं उसका तो स्मरण नहीं है, और मैं यह देह हूं, ये अविद्या है। इसको कहते हैं अस्मिता, पांच प्रकार के विद्या में अस्मिता, मैं हूं, तो मैं क्या हूं, मैं ये देह हूं और देह से संबंधी लोग मेरे हैं, वस्तुएं मेरी हैं। और इसके कारण क्या होता है कि देह को सुखी रखने के लिए, देह को सजाने के लिए ही जीव इच्छाएं करता है, इसको काम कहते हैं, निजेंद्रिय प्रति इच्छा तार नाम काम। देह को सुखी करना, वो जानता है कि मैं देह को सुखी करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह बिल्कुल गलत बात है। जैसे पिंजड़े पर पॉलिश देने से, पिंजड़े पर रेशमी कपड़ा पहन डालने से पक्षी का भोजन नहीं हो पाएगा, पक्षी का भोजन अलग होता है। तो उसी तरह से देह के सुख स्वाच्छंद, देह को सजाना, खिलाना पिलाना, इसको सुनाना, पॉलिश करना, कपड़ा पहनाना, जूता पहनाना, इससे आत्मा सुखी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो इच्छा है देह को सुखी करने की, इसको काम कहते हैं, चाहे अपने इंद्रिय को सुखी करने की इच्छा, चाहे परिवार के या दूसरे, इसको काम कहते हैं। तो ऐसी इच्छाओं से जीव भर जाता है और ये इच्छाएं उसको बाध्य करती हैं कर्म भी, काम करने के लिए विविध कर्म करता है। तो अविद्या काम कर्म भी, स्वरूप का स्मरण नहीं है, देह में आत्मभावना है, इससे देह के सुख की इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं काम करने के लिए, कर्म करने के लिए बाध्य करती हैं। और जीव बहुत बहुत कर्म करता है तो बहुत बहुत प्रकार के उसे दुख भोगना पड़ता है अपने कर्मानुसार। तो इस प्रकार अविद्या के कारण देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि के कारण भौतिक सुख की आशा लालसा, और भौतिक सुख की लालसा से कर्म होता है और कर्म फिर बंधन में डालता है, जन्म लेना, मरना, बूढ़ा होना, रोगी होना, ये होना, नाना प्रकार। तो इस तरह से भगवान देखते हैं कि संसार में जीव बहुत क्लेश भोग रहे हैं, भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। तो भगवान विचार किए कि ये सारे जीव तब सुखी हो सकते हैं जब मैं ऐसा कर्म प्रस्तुत करूं संसार में, मैं लीला करूं, तो उन लीलाओं को सुन करके और स्मरण करके जीव सारे दुखों से मुक्त हो जाए। श्रवण स्मरण अरहाणी, अरहाणी का अर्थ योग्य, उपयुक्त। भगवान ने देखा कि सारे जीव लगे हुए हैं, ये बात सुन रहे हैं, वो बात सुन रहे हैं, ये चीज स्मरण कर रहे हैं, दिन भर चित्त पर कोई न कोई बात चढ़ी रहती है। तो भगवान ने सोचा कि इनके श्रवण कीर्तन के योग्य, ये श्रवण कीर्तन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए, इसके लिए लीला करने के लिए करिष्यन इति केचन। कुछ महापुरुष कहते हैं भगवान इस जगत में जीवों को सुखी करने के लिए लीला प्रस्तुत करने के लिए अवतार लेते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि बिना भगवान की लीलाओं को सुने और स्मरण किए जीव का संसार बंधन नहीं जाएगा, ये भगवान का मिशन है। जैसे आप लोग यहां सुन रहे हैं या अन्य कथाओं में सुनते हैं, तो वास्तव में भगवान का मिशन है, भगवान का प्लान है कि लोग सुने, इसी के लिए वो अवतार लेते हैं। तो श्रवण करेंगे तो फिर स्मरण होगा, भगवान की लीला सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। तो जीवों को श्रवण और स्मरण की सुविधा देने के लिए, दिव्य लीला के श्रवण और स्मरण की सुविधा देने के लिए, कीर्तन की सुविधा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, ये मत है, अंतिम मत। और इसी मत को कुंती महारानी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के आने के अनेक कारण हैं, सब सत्य है, ऐसा नहीं कि कोई असत्य है, सब सत्य है, लेकिन सभी सत्यों में कारण सिरमौर है भगवान की दया। ये दया करके आते हैं और लीला करते हैं ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में और अन्य अवतारों में भी दया करके लीला करते हैं, जिससे जीव उन लीलाओं को, भगवान की कथाओं को कहे, सुने, स्मरण करे, अपने आप को सुखी हो जाएगा, भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान हृदय में रहेंगे तो सुखी हो जाएगा। इसको सिद्धांत के रूप में वर्णन करके कहती हैं, अतः जो लोग आपकी लीला को, इहितम का अर्थ लीला, आपके लीला को सुनते हैं, गाते हैं, अभिनंदन करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वे आपका दर्शन पाते हैं, वो आपके धाम चले जाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्मशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः तैव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो हे प्रभो, जो आपके इहितम, आपके लीला को, चरित को शृण्वन्ति, सुनते रहते हैं। कब सुनते हैं, कितना, सबके लिए कुंती महारानी कहते अभीक्षण सह, बारम्बार श्रीमती सुनते रहते हैं, गायंती और बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, गायंती श्रीमती, गायंती गिणंती, श्रृण्वन्ति गायन्ति, कैसे है, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षण से, श्रृण्वन्ति सुनते रहते हैं, वक्ता के रहने पर कोई वक्ता है तो वहां सुनते रहते हैं, और श्रोता है तो गायन्ति, तो गाते रहते हैं। गाना और सुनना एक साथ नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ है कि जब वक्ता मिलता है तो श्रृण्वन्ति और श्रोता मिलते हैं तो गायन्ति, और दोनों में कोई नहीं रहता है, श्रोता वक्ता नहीं मिलता है तो गृणन्ति, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, जप करते रहते हैं, श्लोक बोलते रहते हैं। अथवा गृणंती का अर्थ है कथा कहते हैं, गाते हैं, कहते हैं। यहां से लगाना पड़ा ते के बदले पहले ए आएगा, ये जना तव इही तव, आपके लीला चरित्र को श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्मशः, अभीक्ष्मशः का अर्थ है निरंतर, बारंबार गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, नंदंती अभिनंदन करते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भगवान की लीला को कह रहा है, गा रहा है, तो उसको सुन करके अनुमोदन करते हैं, अभिनंदन, आनंदित होते हैं, आहा बहुत अच्छा काम हो रहा है, और सब तरह से सहायता करते हैं, श्रवण कीर्तन में सुविधा देते हैं। जैसे कोई कथा हो रही, जैसे कथा हो रही है, तो इस कथा में भूरी भूरी सहायता करना, लोगों के खाने की व्यवस्था करना, और तरह की व्यवस्था करना, जिससे लोग आराम से सुन सके और हृदय में वास्तव में प्रसन्नता हो कि भाई हम तो माया में पड़े हैं, हमको समझ नहीं है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग गा रहे हैं, कह रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, और इस तरह से वाणी से अनुमोदन करते हैं, और वाणी से ही नहीं केवल और शरीर से भी, धन से मदद करते हैं इस पवित्र काम में, जो भगवान का मिशन है। अभी आपने सुना कि भगवान इसी के लिए आते हैं कि लोग श्रवण कीर्तन कर सके, तो इस तरह से नंदन थी, कुंती महारानी कहते हैं कि जो लोग नंदन अभिनंदन करते हैं, वो दूसरा गा रहा है, सुन रहा है, तो अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो उनको भी सुनने और गाने का फल मिलता है। जो निरंतर आपकी लीला कथा को कहता रहता है, सुनता है, गाता रहता है, जप करता रहता है, और दूसरे लोग करते हैं तो उसका अनुमोदन करता है, तो ऐसे लोग अचिरेण शीघ्र ही आपके चरण कमलों का दर्शन पाते हैं, आपसे भेंट होती है उनकी, कथा काल में हृदय में तो आप उदित होते ही हैं, इसके बाद तत्काल ही, बहुत देर से नहीं, शीघ्र ही आपके साथ भेंट होती है उनकी, आपका दर्शन मिलता है, और आपका चरण कमल ऐसा है कि जिस व्यक्ति को दर्शन मिलता है उसका भाव प्रवाह जन्म मरण सदा के लिए समाप्त है, सारा दुख खत्म हो जाए, भाव प्रवाह उपरम, भाव प्रवाह उपरत हो जाता है, बंद हो जाता है, उस जीव सदा के लिए सुखी होता है, वो भगवान के साथ हो जाता है। तो भगवान वास्तव में दूर नहीं है, लेकिन किसको मिलते हैं? जे श्रवंती गायंती गृणंती अभिनंदंती अभिक्षंसत, जो बारंबार भगवान की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, बोलते रहते हैं, अभिनंदन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे लोग शीघ्र ही भगवान को देखेंगे। इसमें एवं शब्द है अवधारणा के लिए, दृढ़ता के लिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ते एवं पश्यंती, एक एवं लगाते हैं, जो सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, अभिनंदन करते हैं, वही आपको देखते हैं, आपका दर्शन करते हैं। जो नहीं सुनते हैं, नहीं गाते हैं, नहीं कहते कहते, वो नहीं देखेंगे। एवं शब्द जिनको भगवान का दर्शन करना हो, भगवान के सुख को लेना हो, आनंदमय नित्य जीवन जीना, उन्हें चाहिए कि भगवान का जप करे, कथा करे, कथा सुने और दूसरे लोगों को भूरी भूरी सहायता दे। इस अवसर पर मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की कामना करता हूं, जो जसपाल अग्रवाल जी जो ये व्यवस्था किए हैं और उनके साथ इक्ष्वाकु प्रभु जी हैं और अन्य उनके मित्रों ने, साथियों ने जो भी हेल्प किया है, वचन से, वाणी और शरीर से, धन से, उन पर भगवान के आशीर्वाद बरसे। भगवान कृष्ण कृपा करेंगे ही, वो तो भगवान का काम कर रहे हैं, यही भगवान का मिशन है, इसी के लिए वो आते हैं, श्रवण कीर्तन करें, भक्त जन ऐसी सुविधा दी जाए। तो उनको भूरी भूरी मैं धन्यवाद देता हूं और आपके आशीर्वाद की भी कामना करता हूं कि उनकी मति भगवान में लगी रहे और इस तरह से वो जनता के हित में लगे रहे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।